कृपा करके दोनों हाथ जोड़िए और मेरा पीछे जगन्नाथ का जो प्रणाम मंत्र मेरा पीछे आप उच्चारण कीजिएगा। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः, जगन्नाथाय ते नमः, जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। संध्याकालीन श्री श्री जगन्नाथ कथा कथा पर आप सबको कृष्ण बलरंगा मंदिर का ओर से हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। ये कथा 3 दिन चलेगा, 3 दिन 3 टॉपिक। पहला दिन भगवान आलारनाथ का बारे में, दूसरा दिन खीरचुरा गोपीनाथ, तीसरा दिन साखी गोपाल। हम शीर्षक रखे हैं लीलामय भगवान। भगवान किस प्रकार लीला करते हैं? भगवान भी लीलामय है, जो भी लीला करते हैं हमेशा के लिए है। भगवान लीला करने के लिए बहुत उत्साह रहते हैं। कोई भी जगह पे हो सकता है, वैकुंठ लोक में हो सकता है, मर्त्य में हो सकता है, पाताल लोक में, कोई भी जगह पे लीला ही लीला करते हैं। इसलिए भगवान का नाम है लीलामय भगवान। और कार्तिक महीना खत्म हुआ, कार्तिक महीना में भगवान रासलीला। तब जो आलारनाथ है, कितने भक्त लोग आलारनाथ दर्शन किए हैं? बहुत कम है। आलारनाथ दर्शन हर दिन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है जगन्नाथ जब बुखार होते हैं, स्नान पूर्णिमा से लेके नव जौवन वेश तक, रथ यात्रा का पहला दिन तक। रथ यात्रा समझो काल है, उसका पहला दिन, उसी दिन तक जगन्नाथ दर्शन नहीं देते हैं। गिना जाता है तो 15 दिन तक कहते हैं, 15 दिन जगन्नाथ दर्शन नहीं देते हैं। वही 15 दिन वहाँ पे यात्रा होता है, जहाँ की आलारनाथ। आलारनाथ नाम क्यों पड़ा है? और वो जगह है ब्रह्मगिरी, छोटा से गांव है ब्रह्मगिरी, और स्वयं ब्रह्मा जी आए थे। कैसा आए सब कुछ आपको अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, आप समझ पाएंगे। और वहाँ वो 15 दिन के अंदर आप कोई भी व्यक्ति जाके दर्शन करता है और जगन्नाथ का दर्शन करने का फल मिलता है। हर दिन तो ऐसा ही ठाकुर जी को दर्शन करने मात्र से वही फल मिलता है, लेकिन कोई तिथि व्यति होता है किसी भी, जैसे प्रकार राधा कुंड में स्नान करना, राधा कुंड का जो प्रकट दिवस दिन में स्नान करने से उसका और ज़्यादा पुण्य फल मिल जाता है। उसी प्रकार कोई तिथि होता है, लेकिन ऐसा देखा जाए तो धाम में क्या तिथि। जैसा वृंदावन धाम में कोई बोलेगा मैं हर दिन परिक्रमा करूं, और कुछ भक्त लोग के मन में संकल्प लगते एकादशी को एकादशी परिक्रमा करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन धाम में रहने वाले को वही फल मिल जाता है धाम में रहने मात्र से। और जो दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए, वो भाव लेकर आना चाहिए दर्शन करने के लिए। ऐसे भाव श्रीक्षेत्रपुरी में दक्षिण दिशा के प्राय 20 किलोमीटर दूर में नानाविध श्यामल वनराज विमंडित एक देववंद्य उच्च प्रदेश सुप्राचीन काल से ब्रह्मगिरी व श्री आलारनाथ नाम से विख्यात है। इस स्थान पर आदिगुरु ब्रह्मा सत्य युग से भगवान विष्णु को विष्णु का उपासना करने के लिए उपासना में मग्न थे उसी जगह पे। और वो देखा जाता है कि महाराज इंद्रदमन द्वारा प्रतिष्ठित श्री मंदिर जगन्नाथ जगन्नाथ मंदिर को प्रतिष्ठा करने के लिए स्वयं इंद्रदमन राजा ने कहाँ गया था? ब्रह्मलोक को गया था बुलाने के लिए, और उनका आदेश को मानते हुए और तब ब्रह्मा जी ब्रह्मगिरी में पहुंचे थे। ब्रह्मा का तपस्या स्थान है इसलिए इसका नाम है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मा जी स्वयं वहां पे, गिरी मतलब पर्वत और ब्रह्मगिरी मतलब ब्रह्मा जी स्वयं तपस्या किए थे इसलिए इसका नाम है ब्रह्मगिरी। कोई कोई कहते हैं इसी स्थान में ब्रह्मा रुक्म वर्ण और गौर हरि का दर्शन करने के लिए और करके दर्शन करने के लिए और दर्शन करके अपना जीवन को धन्य माने। प्रथम संध्या में गौर हरि अवतीर्ण होगा उसी समय से श्रौत प्रणाली का, श्रौत प्रणाली मतलब सुनने का मर्यादा स्थापन के लिए कृपा पूर्वक ब्रह्म संप्रदाय स्वीकार लीला करने करेंगे और पुरुषोत्तम से इस स्थान को आगमन करेंगे। समग्र दक्षिण देश दक्षिणत्य प्रदेश नाम प्रेम में प्लावित करूंगा। पुनराय उन्हीं का विशुद्ध प्रेम प्रचार लोक समाज में आचरित होकर उत्कल पुरुषोत्तम ब्रह्मगिरी औज्जल्य प्रकाशित होकर समग्र विश्व ब्रह्म संप्रदाय का वाणी प्रचारित होगा। ब्रह्म शब्द का अर्थ है बृहत पूर्ण चेतन और गिरी शब्द का अर्थ है वाणी। ब्रह्मगिरी का अर्थ हुआ चैतन्य का वाणी। गिरी सप्तमी में ही गिरी है। चैतन्य वाणी में चैतन्य का व्याप्ति अधिष्ठान और ब्रह्म संप्रदाय का वास्तव सत्य में निहित है। सुप्राचीन काल से दक्षिण प्रदेश श्री नारायण परायण भक्त लोकों द्वारा अधूषित है। मायावाद ध्वंत विनाश का आचार्य श्री रामानुचार्य दक्षिणत्य में उदित होने का पहले बहुत ही नारायण परायण सिद्ध महापुरुष दक्षिण देश में पृथ्वी का प्राचीन में प्राचीनतम ग्रंथ जैसा ऋग्वेद ब्रह्मा ब्राह्मण लोक का नित्य आचमनीय मंत्र में जो विष्णु परमपद सदा दर्शनकारी सूर्यगण का कथा श्रुत है वही दिव्य सूर्यगण युग युग में दक्षिणत्य मतलब दक्षिण देश में आविर्भूत हुए थे। श्री संप्रदाय का इतिहास लेखक श्री अनंत आचार्य पपर्नामृत ग्रंथ में 74 अध्याय में ये द्वादश पूर्वदित्य सूर्य का कथा उल्लेख है। दिव्य सूर्य अर्थात तो भगवत पार्षद ये तमिली भाषा में भागवत पार्षद को तमिली भाषा में अलवर कहा जाता है। यहाँ पे कुछ भक्त लोग तमिल का होंगे तो उनको मालूम पड़ा होगा। कोई है इधर तमिल का तो माता जी को मालूम होगा। भगवत पार्षद को वो लोग क्या कहते हैं अलवर व आलवर कहा जाता है। ब्रह्मा का भजन सिद्ध स्थान ब्रह्मगिरी निर्जनता और पवित्रता में श्री नारायण उपासना का विशेष अनुकूल स्थान है। वहाँ दक्षिण देश से कुछ दिव्य सूर्य व अलवर इस स्थान में चतुर्भुज नारायण मूर्ति का स्थापन करके पंचरात्रि के विधि में अर्चा अवतार को पूजा करते थे। अलवर का नाथ व श्री नारायण अलवर नाथ व अलवर नाथ नाम में विख्यात हुआ और ब्रह्मगिरी का कियदंश अलवर नाथ का नाम का अनुसार अलवर पतम अलवर पटना अलरपुर और अलवरपुर इत्यादि नाम से विख्यात हो गया। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जब मायापुर पहले मायापुर नहीं था क्या नाम था मियापुर सब मुसलमान बस्ती था। अब अभी जाएंगे तब जब आप कलकत्ता से मायापुर आते हैं बाय टैक्सी आते हो तो बहुत मतलब पूरा हमारा मंदिर का थोड़ी से आगे ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर एक किलोमीटर दूर पूरा बस्ती है मुसलमान का बस्ती और उसी को पहले नाम था वो जगह का नाम मियापुर और श्रील प्रभुपाद इसका नाम क्या दिए मायापुर। इस प्रकार अपभ्रंशित नाम का अनुसार फिर नामित किया जाता है। इस प्रकार ये अलारपुर कोई कहता था कोई अलवरपुर कहता था लेकिन उड़ीसा का भाषा का अनुसार अलारनाथ भगवान का नाम का अनुसार अलारनाथ के है, और वो शहर का नाम रखे ब्रह्मगिरी। तब वहां से दक्षिण देश से कुछ पूजा करने के लिए पहले ब्राह्मण आए थे, और कितना ब्राह्मण, 1200 घर, घर मतलब परिवार, 1200 परिवार लोग आए थे वहां पे पूजा करने के लिए पहले। तब कुछ ब्राह्मण सबका सेवा दिया गया अलग अलग, पारिवारिक सेवा रहता है, जो भी परिवार लोग अलग अलग परिवार का अलग अलग तिथि अलग अलग दिन में सेवा के लिए बंटन किया जाता है, अलग अलग तिथि का अनुसार अलग अलग दिन का अनुसार बंटन करके वो सेवा करते हैं। जिस प्रकार हमारा मंदिर पे सब अलग अलग सेवा है ना, कोई पूजा कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई माला बना रहा है, कोई ड्रेस श्रृंगार कर रहा है, कोई लाइफ मेंबर कर रहा है, कोई प्रीचिंग कर रहा है, इस प्रकार सेवा, इस प्रकार उनको बंटन किया गया था। लेकिन वहाँ पे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण था पूजा विधि करने का, इसलिए ब्राह्मण लोग को पूजा विधि में मग्न रहते थे। लेकिन एक दिन का घटना क्या हुआ, और कभी कभी कोई ब्राह्मण नहीं होता था अपना परिवार में, बाई चांस परिवार में कोई काम पड़ गया और चला जाता था, तब अपना बच्चे को कह के चला जाता था, और बच्चा ये सेवा का संभाल लेता था। क्योंकि मंदिर पे कोई बाई चांस को हमारा इस्कन में क्या होता है, कभी कोई नहीं होता दूसरा को बोल कर जाता है, सेवा में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सेवा नित्य सेवा होना चाहिए। उसी प्रकार दक्षिण देश से 1200 घर कोमा ब्राह्मण ब्रह्मगिरी में आकर वास करते थे, और प्रजाकर में आलारनाथ का सेवा करते थे। किंवदंती है यह कि कोई भी समय उक्त ब्राह्मण कोई अन्य कार्य में चला जाता था, तब अपने अल्प वयस्क पुत्र को आलारनाथ का सेवा करने के लिए कह जाता था। तब एक दिन का घटना कैसा हुआ, सरल हृदय ब्राह्मण अपना बच्चे को कहा, आप थोड़ा से आज आलारनाथ का सेवा कर देने का, मैं थोड़ी दिन के अंदर वापस आ जाऊंगा। तब बट्टू ब्राह्मण ने पिताजी को कहा, फिर बोला, पिताजी मेरा को तो मंत्र जंत्र मालूम नहीं है, मैं कैसा भगवान का सेवा करूंगा, छोटा बच्चा है लेकिन सरल हृदय है, ये स्वाभाविक है बच्चे का। तब वटु ब्राह्मण ने पिताजी का बात में सहमत हो गया, उन्होंने कुछ भोग प्रस्तुत किया, भोग मतलब ज्यादा से ज्यादा खीर ही भोग लगाते थे, इसलिए वहां का फेमस है खीर, आलारनाथ में फेमस है वो खीर। बट्टू ब्राह्मण ने भोग प्रस्तुत करके आलारनाथ का सामने उपस्थित हुआ और निवेदन मंत्र करने का, मंत्र कुछ भी मालूम नहीं, कहे, प्रभु मैं अति अज्ञ बालक हूं, लेकिन मेरा को कोई मंत्र जंत्र मालूम नहीं है, मेरा पिता अन्यत्र कहाँ गए हैं, और मेरा को कहे आपका पास है भोग लगाने के लिए, आप कृपापूर्वक इस भोग को ग्रहण कीजिए। कितना सरल हृदय से बच्चा भगवान को प्रार्थना कर रहा है। इसलिए कहते हैं जब शबरी को अपना गुरु कहते तुम्हारा घर पे भगवान आएंगे, तुम भगवान का सेवा करो, और घर को उन्होंने क्या किया, हर दिन सफाई करते थे, सफाई करके पूरा लेपन पोछा सब लगाते। पहले में कोई मार्बल का घर नहीं था, कोई मार्बल था पहले समय में, मार्बल नहीं था, इसलिए गोबर में लेपन किया जाता था। घर गृहस्थी गांव का लोग जो होते हैं, अभी भी उड़ीसा में ये है, अभी आज का दिन से कौन सा महीना चालू हुआ, मार्गशीर का महीना चालू हुआ, अभी मार्गशीर का महीना आज हुआ मंगलवार, अभी ये दो दिन का छड़ के काल हो गया बुधवार, तीसरा दिन कौन सा बार आएगा, पहला मार्गशीर महीना का पहला गुरुवार से चालू होगा, और महीना में कितना गुरुवार आएगा, चार गुरुवार आएगा। और ये चार गुरुवार उड़ीसा में हर घर पे लक्ष्मी पूजा किया जाता है। और लक्ष्मी पूजा में क्या होता है, बुधवार को रात को माताओं लोग को सोते नहीं, माताओं लोग इतने काम में व्यस्त रहते हैं। पति लोग तो सो जाएंगे, जेंट्स लोग को सो जाएंगे, लेकिन माताओं लोग का पूरा काम बुधवार का रात को इतने काम पड़ेगा कल्पना नहीं कर सकते। क्या काम, घर को पूरा पोछा लगाएंगे, पूरा मतलब गोबर में लेपन होगा घर का चार तरफ। लेपन करने का बाद है, फिर रात को कुछ पकवान बनाएंगे, जो कि उड़िया भाषा में बोलते पीठा, पकवान बना के रखेंगे। और सुबह सूर्य उदित होने का पहले आप लोग धान को, उड़िया भाषा जो होते धान होता है, धान को हम लोग लक्ष्मी के रूप में मानते हैं उड़ीसा में लक्ष्मी का। और वो धान को एक ही गम्बुज बनाएंगे, जैसे लाइक दिस गम्बुज टाइप का बनाएंगे घर का अंदर, और उसमें लक्ष्मी जी का फोटो रखेंगे, लक्ष्मी को फोटो रखेंगे, पूजा किया जाएगा सुबह 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 सुबह। ये पूरा रिवाज है। और जगन्नाथपुरी में भी पूजा होता है। तब बच्चे ने आलानाथ का पास इस प्रकार भोग निवेदन करके बटू ब्राह्मण मंदिर का द्वार बंद कर दिया। बच्चा ने क्या किया, भगवान को भोग लगाया। कोई मंत्र जत्र मालूम नहीं, इसलिए कहते हैं शबरी जब ने भगवान को खिलाया था, बेर खिलाया, तब कोई मंत्र जंत्र बोला था, कोई मंत्र पाठ किया था। बहुत सारे लोग भक्त लोग पूछते हैं कौन सा मंत्र में भगवान खाएंगे, कोई भी जरूरत नहीं है जो कि हमको मंत्र करना जरूर है। आपका भाव है भगवान जरूर बैठ जाएंगे, अपना सिंहासन को देखेंगे नहीं कि नीचे नहीं देखेंगे। सुदामा का जब पास गए थे कोई झाड़ू पोछा नहीं लगाया था, सुदामा को ऊपर अपना सिंहासन दे दिए और नीचे बैठ के देखा नहीं कि इधर गंदा है कि सफाई हुआ कि नहीं हुआ, पोछा लगाया कि नहीं लगाया। मेन है भाव। अरे बच्चे का भाव को देखिए अब आगे जाके। तब बटू ब्राह्मण ने भगवान के सामने वो पात्र को रख दिया, भोग पात्र रख के दरवाजा को बंद कर दिया। पिताजी ने बोला जिस प्रकार बताया, पिताजी ने जिस प्रकार बताया उसी प्रकार उन्होंने किया। इसको थोड़ा बहुत मालूम था, हाँ भगवान को भोग लगाने के टाइम पे बंद करना पड़ता है। तब दरवाजा का बंद करके भट्टू ब्राह्मण मंदिर का बाहर आकर बंधु लोग का साथ, क्योंकि बच्चा है, बच्चा होने का साथ, तब दूसरा बच्चे का साथ खेलने लगा। तब बालक का माता आई, पुत्र का ऐसा धूली धूसरित अवस्था में देखकर कहे, क्या ठाकुर को भोग समाप्त नहीं हुआ, इतना देर क्यों कर रहा है? ऐसा कहने पर बालक कहे, मैंने ठाकुर को भोग दे दिया हूं। ऐसा सुनकर बालक का माता कहे, भोग देने का कुछ समय का बाद प्रसाद को अन्यत्र कर लेना चाहिए, उसी प्रसाद को घर वापस ले आना होता है, आपका पिताजी ऐसा ही करते थे। बालक का माता का आदेश को ठीक से सुनकर बच्चा ने दरवाजा आवाज दिया, आवाज देके भोग मंदिर का अंदर खोल के प्रवेश किया और भोग पात्र में देखा तो कुछ है नहीं। बालक वही बात माता को कहे, बालक का माता को ऐसा विश्वास हुआ नहीं। बालक का माता को भोग मंदिर पे प्रत्यक्ष कराने के लिए, प्रत्यक्ष देखने के लिए वो चाहती है। बालक ने जितने भी बताया बोला, देखिए बालक भय से डर रहा है, बच्चा है ना, माँ भी गुस्सा में है और आंख पूरा लाल लाल है, मम्मी कुछ बोलेगी क्या करेंगी, तो फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। और बचना छोटा बच्चा है। माता ने सोचा बालक चापल्यवशत श्री नारायण का समस्त भोग खाया है, हो सकता है प्रहार भय से वो मिथ्या कह रहे होगा। किंतु क्रमागत कुछ दिन का बाद बालक का माता को सम्मुख में इस भाव में ठाकुर को भोग प्रदान किए और कुछ समय बाद भोग मंदिर खोले देखे तो सत्य है आलारनाथ समस्त भोग निशेषित रूप में ग्रहण किया है। बालक का माता इसमें आश्चर्यजनित होकर बालक से कहे, आपका पिता 1600 उपचार में आलारनाथ को पूजा करते थे, किंतु भगवान इसी भाव में समग्र नैवेद्य सेवन नहीं किए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। फिर आप भगवान को कौन सा पूजा विधि किया, कौन सा मंत्र ऐसा पाठ किया जो भगवान संपूर्ण खा लिए? फिर भी भगवान आपका हाथ से भोज्य द्रव्य ग्रहण करते हैं। कुछ दिन का बाद बालक का पिता वापस आए, ये सब घटना पत्नी कहने लगा, होता है ना कभी कभी पत्नी बेटा का कि बेटी का कुछ जो गलतियाँ इमीडिएटली बताने लग गए, और बताएंगे तो कब बताते हैं? भोजन देने का टाइम पे, जब गुस्सा चढ़ेगा। तो पिता जब वापस आए ये सब घटना पत्नी कहने लगा। ब्राह्मण ये बात सुनकर आश्चर्य हो गए। फिर पुत्र का दूसरा दिन ठाकुर भोग समय पे भोग मंदिर पे लेकर गए। बालक किस प्रकार के नारायण को भोग प्रदान करता है और नारायण फिर ब्राह्मण बटु फिर कैसा ग्रहण करते, उसका प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए पिताजी साथ में गए। तो बटु ब्राह्मण ने किया गया, खीर बनाए, बना के आलानाथ को भोग प्रदान किया। बालक का पिता भोग मंदिर का अभ्यंतर में एक ही कोणा में छुप गया, जैसा भगवान नहीं देख सकते, सारा संसार छुप जाए लेकिन भगवान आँख से कोई छुप नहीं सकता है। सकते आप आँख बंद कर दो, आप किसको देख नहीं सकते लेकिन भगवान आपको देख सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग मन में प्रश्न करते हैं, बोले हम कभी कभी चोरी करते हैं कोई नहीं देखता है, लेकिन एक दिन ना एक दिन चोर पकड़ा जाता है, नहीं पकड़ा जाता है? तो वो बालक का पिताजी कोणा में छुप गए और बालक लेकर भोग मंदिर का अंदर ठाकुर जी का सामने भोग पात्र को रख दिया, भोग लगाया। और भोग लगाने के समय पे ब्राह्मण छुप कर सुने, बालक नारायण को भोग प्रदान करते कहे, हे ठाकुर, हे प्रभु, मैं आपका मंत्र जंत्र तंत्र जानता नहीं हूँ, आपको निवेदन करना भी मालूम नहीं है, मेरा पिता उपस्थित नहीं है, आप भोग ग्रहण कीजिए। बालक ऐसा कहकर भोग मंदिर का जो द्वार है बंद कर दिया और भोग मंदिर पे बालक का पिता देखने लगे, जे कि नारायण चार भुज में भोजन कर रहे हैं, दो भुज में नहीं, चार भुज में, चार हाथ लगाकर भोजन करे, पटापट जैसा दो मिनट में खत्म हो जाएगा। ठाकुर समस्त भोग भोजन कर देंगे। ब्राह्मण ठाकुर के पास जाकर भगवान का हाथ को पकड़ लिया और कहे, आप जब समस्त भोग भोजन कर देंगे तब हम लोग क्या खाएंगे? श्री आलारनाथ कहे, भगवान स्वयं कहने लगे, मैंने बालक का प्रीति से समस्त भोग भोजन कर रहा हूं, आप मेरा से कौन सा वर चाहते हो? पुजारी ब्राह्मण ने कहा, मैं और क्या वर चाहूंगा, आप जब हमारा प्राप्य समस्त द्रव्य भोजन करते हो तब हम लोग अनाहार में प्राण त्याग करना होगा। श्री आलानाथ कहे, आज से मैं आपका कोई भी वस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, जगत में समस्त द्रव्य किसका है? किसका है? आलारनाथ का। आलारनाथ दूसरा अर्थ में कहते हैं चारों दिशा में चारों नाथ है, चारों दिशा में चारों नाथ। बता सकते हैं कौन सा दिशा में कौन सा नाथ है? पूर्व दिशा में कौन सा नाथ है? जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, ये पूर्व दिशा। और पश्चिम दिशा में द्वारिका नाथ, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रघुनाथ। सही हुआ, चारों दिशा में चारों नाथ। और वो बीच में कौन आ गया? आलारनाथ। बीच में कौन है? मतलब पुरी में बैठे है जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, बद्रीनाथ और रघुनाथ। चारों नाथ चारों दिशा में और चार युग में आए। तो वही आलानाथ किस प्रकार की लीला करते हैं? तब सारा संपत्ति है भगवान का। अब भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वदेहिनाम ज्ञान तमाम शांति मुच्छति। कोई भी व्यक्ति शांति प्राप्त करना चाहता है, शांति एक ही जगह पे है। कहां पे है? भगवान का चरण पे। भगवान स्वयं चतुर्भुज नारायण का रूप में, चतुर्भुज का नारायण का रूप में भगवान चतुर्भुज बन के चार भुज में सारा संसार का लोक को दे रहे थे। जो व्यक्ति जो मांगता था देते थे, लेकिन एक ही चीज किसको नहीं दिया? और चरण कमल पर बैठे कौन? नारायण का चरण कमल पर बैठे कौन? लक्ष्मी जी बैठकर क्या करता है, क्या करती है? गेंद खेलती है नहीं, पाद संवाहन करती है। इसलिए भगवान का चरण कमल पर लक्ष्मी जी बैठ के देख रहा है भगवान का क्या लीला हो रहा है। भगवान क्या कर रहे हैं? चार भुज बन के चतुर्भुज रूप में चार भुज में दे रहे, सारा संसार का लोग को दे रहा है, लेकिन एक चीज को छुपा दिया। क्या छुपाया? दे रहे जब, तब देखे बोले सारा संसार का लोग जो भी कुछ मांगते हैं मैं देता हूं, दे रहा हूं। भगवान दे रहे थे और एक चीज को क्या छुपा दिया? तब लक्ष्मी जी देखते हुए आश्चर्य हो गए, बोले सब कुछ दे रहे थे क्या पैर का नीचे छुपा दिया? तब लक्ष्मी जी पूछने लगा, पूछते हैं भगवान आप सब कुछ दे रहे थे पैर का नीचे क्या छुपाया? और भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, क्या कहे? सारा संसार का लोग जो भी आते हैं मेरा पास और कुछ ना कुछ मांगते हैं, है कि नहीं, विषय भोग ही मांगते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मांगता है मेरा को सुख और शांति दे दो, दुख दे दो, कोई मांगता है क्या? विषय भोग ही मांगता है और मैं देता हूं विषय भोग, जो भी चाहे देता हूं, लेकिन पैर का नीचे एक चीज को छुपा कर रखा हूं, वो है शांति। क्या है? सुख और शांति को छुपा कर रखा, इसलिए किसी को नहीं देते हैं। और वही व्यक्ति को देते हैं जो व्यक्ति उनका चरण कमल को पकड़ने के लिए उपाय करता है। और चरण कमल को पकड़ने के लिए उपाय क्या है? उपाय क्या है? प्रभु का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रभु का नाम है। प्रभु इसको छुपा के रखा है और वही व्यक्ति को देते हैं। इसलिए कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी धन बिना रहते उदास संसार में, सब थोड़ी थोड़ी दुखी सुखी रहते, श्याम का क्या है? दास। श्याम का दास बनो, प्रभु का दास बनो। जो दासत्व को स्वीकार करता है, दासत्व को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। और सुख आस्वादन होगा जब दासत्व को स्वीकार करेंगे। संसार में लोग दास नहीं बनना चाहते, बोस बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? बोस। उड़ गया होश, बोस नहीं तो होश उड़ जाएगा। और बोस जो बनता है, देखिए अभी सभी जितने सब बोस बने थे कुर्ची का प्रति आसक्त हुए, कुर्ची का नीचे रखे थे सब माल पानी और सबका सब बोस अभी होश उड़ रहा है। क्या करना है? मैं आज सुबह की एग्जाम्पल दे रहा था, उसको साइड नहीं लेना चाहिए, फिर भी आप लोग को भक्त लोग है इसलिए मन में आता है बताने के लिए। एक व्यक्ति का टैक्स हो गया 29,000 करोड़ रुपया, सिर्फ टैक्स लगा हुआ। आप सोचो उसके पास कितना पैसा होगा आज का टाइम पे, वो साइड छोड़ो, और बाई चांस वो टैक्स उधर नहीं डाल के इधर डाल देता था हमारे कृष्ण बलराम का चरण पे, और कितना संपूर्ण मुक्ति हो जाता था। सही है कि नहीं है? हरे कृष्णा। लेकिन इतने लालसा है और छोड़ते नहीं, क्योंकि माया कभी छोड़ना नहीं चाहता है। और आपको माया नहीं छोड़ोगे तो आपको एक दिन माया नहीं छोड़ोगे तो काया को छोड़ना पड़ेगा। माया नहीं छोड़ोगे काया को छोड़ना पड़ेगा। काया समझते हैं ना, काया मतलब शरीर। तो भगवान कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसा, और संपूर्ण जगत का मालिक है प्रभु और भोग्य, सब कुछ भोग करने के लिए भगवान का अधिकार है और आपका अधिकार नहीं। जो प्रदान करता हूं ये सब कुछ मेरा भोग्य है, और मैं कृपा करके जो प्रदान करता हूं वो मेरा अवशेष और मेरा कृपा पूर्वक रूपक आप लोग का ग्रहण योग्य है। मैं कृपा करके आपको प्रदान करता हूं, जरा मेरा कुछ अवशेष रह जाता है वो ये कृपा मिल जाता है। जब आप मेरा भोग में भोग वृद्धि किया तब आप और आपका वंश यथा समय में निर्वंश हो जाए, भगवान ये वर दे दिया। केवल आपका पुत्र रूप में उसको मैं नित्य भक्त को मेरा वैकुंठ लेकर चला जाऊंगा। श्री आलानाथ का इस प्रकार उक्ति में दक्षिण देश का 1200 घर का जो कोमा ब्राह्मण थे तत्क्षणत विनष्ट हो गए, उनका वंश में कोई नहीं बचा। उसी समय पुरी में राजा को आलानाथ स्वप्न में आद्य ब्राह्मण का सेवा करने के लिए, अद्य बधि जिसा भगवान का सेवा हो सकता है करने के लिए, भगवान स्वयं स्वप्न में कहे, महाराज श्री पुरुषोत्तम देव ब्रह्मगिरि को 2 घर वशिष्ठ गोत्रीय और 1 घर भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण को भेजे। भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण आलानाथ का अर्चन कार्य में नियुक्त हुआ और वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण श्रृंगार और रंधन कार्य में नियुक्त हुआ। पंडालों को कहते हैं श्री आलारनाथ मंदिर कितना दिन का पुराना है, कितना दिन का ये पुराना है, ये बात उन्हीं का प्राचीन पूर्व पुरुष लोग भी सटीक उत्तर नहीं दे सकते हैं और कोई नहीं दे पाता है। मंदिर प्रांगण में 1 कुआं है, रंधन गृह और अपर पार्श्व में दोल मंडप, मतलब दोल का मतलब भगवान बाहर जब आते हैं कौन सा मंडप में बैठते हैं वो मंडप है। मंदिर का एक पार्श्व में विशिष्ट एक बृहत प्रस्तर विराजमान है, उसी प्रस्तर से चैतन्य महाप्रभु का सर्वांग चिन्ह है। श्री आलानाथ का मंदिर संलग्न उत्तर पूर्व कोणा में ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय का एक गौड़िया मठ है। मठ का सामने एक बृहत सरोवर है जिसको स्वयं राधा कुंड कहा जाता है और उसमें नौका विहार होता है। जब चंदन यात्रा होता है पुरी में तब उसमें भी नौका यात्रा होता है। उसी स्थान में चैतन्य महाप्रभु विश्राम किए थे। चैतन्य महाप्रभु 1432 शताब्द प्रथम बार ब्रह्मगिरि को आए थे। श्रीमान महाप्रभु आलानाथ का दर्शन करने के लिए 5 विशेष बात है किसके लिए आलानाथ जाते हैं दर्शन करने के लिए और क्या कारण था। एक एक कारणों को आप नोट कर सकते हैं क्या कारण था। 5 कारण है जो कि चैतन्य महाप्रभु वहां गए दर्शन करने के लिए। चैतन्य चरितामृत में आता है, अनवसर काल में जगन्नाथ का दर्शन न पाकर चैतन्य महाप्रभु जाते हैं। अनवसरे जगन्नाथ न पाया दर्शन, बिरहे आलारनाथ करिला गमन। जब जगन्नाथ अनवसर, और उड़िया भाषा में कहते हैं अनसर, स्नान पूर्णिमा दिन से और भगवान जगन्नाथ दर्शन नहीं देते हैं तब जगन्नाथ को स्नान किया जाता है। कितना गगरा पानी में, किसको याद है? इतना कितना बार भी यहाँ पे बता चुका हूँ, कितना गगरा पानी में भगवान स्नान करते हैं? 108। जगन्नाथ को कितना गगरा में? 35। बलदेव को 33। सुभद्रा को 22। सुदर्शन को मालूम नहीं 18। कितना हुआ? 108 गगरा से जल से स्नान किया जाता है। 108 गगरा में जल से स्नान किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति एक ही तालाब से दूसरा तालाब, दूसरा तालाब से तीसरा तालाब में स्नान करेगा, बुखार पड़ जाता है। तो भगवान को 108 गगरा से जल में जब स्नान किया जाता है तो भगवान को बुखार होगा कि नहीं होगा? भगवान मानवीय लीला करने के लिए बुखार होता है, ये मानवीय लीला। भगवान जो भी लीला करते हैं मानवीय लीला करने के लिए धरती पे आते हैं और मानवीय लीला ही करते हैं। और जगन्नाथ जितना सब लीला किए सो मानवीय लीला, इसको देखना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ स्वयं अपना स्वरूप को छोड़ते हैं, इसलिए कहते हैं नव कलेवर। इसलिए कहते हैं नव कलेवर, कलेवर मतलब शरीर और नव मतलब नया, नया शरीर, नया रूप, नया स्वरूप धारण करते हैं। ये सब भगवान मानवीय लीला करते हैं। तब जब भगवान बुखार पड़ते हैं तब चैतन्य महाप्रभु डेली आते हैं दर्शन करने के लिए, एक दिन नहीं दो दिन। हम एक दिन मंदिर जाते थे, दूसरा दिन टीवी के सामने बैठ जाते हैं, नहीं जाते हैं, तीसरा दिन और किसका साथ बैठ गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का इतना व्याकुलता थे कि डेली आते हैं। अभी भी रिवाज है जगन्नाथ मंदिर गंभीरा से हर दिन कीर्तन आता है, कीर्तन करके शाम को 6 से 7 बजे के अंदर आप दर्शन कर सकते हैं। उनका कीर्तन का मंडली आता है 5 लोग कि 10 लोग जितना हो सकते, और 5 लोग मिनिमम तो 5 लोग आते ही आते हैं कीर्तन करते करते, और जगन्नाथ मंदिर को परिक्रमा करके फिर वापस चला जाते हैं शाम का टाइम। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब दर्शन नहीं पाए जगन्नाथ मंदिर पे, जब भगवान पुकार में पड़ गए तब क्या हुआ? तब चैतन्य महाप्रभु व्याकुल होके ब्रह्मगिरी आए और वहां पे दर्शन। इसलिए कहे बिरहे आलारनाथ करिल आगमन, बिरह में चैतन्य महाप्रभु बिरह होकर आलारनाथ गमन किए। गोपी भावे बिरह प्रभु व्याकुल हैया, आलारनाथ गेला प्रभु सेवारे छड़िया। गोपी भाव को गोपी भाव है और बिरह हो के व्याकुल होया, गोपी लोग जैसा व्याकुल हो जाते थे भगवान को दर्शन करने के लिए, और यही भाव को लेकर चैतन्य महाप्रभु कहांगे कहांगे आवाज नहीं आ रहा है, आलारनाथ जय जगन्नाथ। जितना आवाज आएगा हमको मालूम पड़ेगा आप लोग को सुन रहा है, सुन रहा है नहीं तो सो रहा है, दोष एक ही होगा। जदियो आलारनाथ चतुर्भुज रूप, फिर भी कृष्ण विरह कात्र का श्रीमती राधिका का भाव में प्रभावित श्रीमन महाप्रभु दर्शन में वह दिव्य श्याम सुंदर जसोदा नंदन श्री महाप्रभु का उक्ति है। कृष्ण नाम बहु अर्थ नहीं मानी, श्याम सुंदर जसोदा नंदन मत्र जानी। कृष्ण नाम बहु अर्थ नहीं मानी, श्याम सुंदर जसोदा नंदन मात्र जानी। श्रीमन महाप्रभु का आलारनाथ गमन का लीला में श्री वृंदावन का रास लीला को अंतर्हिता होकर कृष्ण का पैठा नामक स्थान में चतुर्भुज होकर उपवेशन लीला ही स्मृतिपट जागृत होता है। अन्यान गोपीलोक भगवान को चतुर्भुज रूप देखकर दूर से प्रणाम करके अन्यत्र चला जाते हैं, लेकिन महाभावमयी श्रीमती राधिका का निकट श्री कृष्ण चतुर्भुज नहीं होते हैं, कौन सा होते हैं? द्विभुज मुरलीधारी। दूसरा कारण क्या है? भक्त लोग के प्रति विमना होने का लीला प्रदर्शन करके शिल परमानंदपुरी जब प्रभु का निकट पार्षद छोटा हरिदास को क्षमा करने के लिए महाप्रभु का पास आवेदन किए, तब महाप्रभु साधक भक्त का भक्त को शिक्षा देने के लिए क्या कहे? मोरो आज्ञा है मुई जाऊं अलरना, एकले रही बता गोविंद मात्र सा। मैं ये सब चीज को समाधान नहीं करना चाहता हूं। महाप्रभु कहते हैं मैं सर नया नया साधक भक्त का बात को सुनना नहीं चाहता हूं, और मैं यहां से छोड़कर कहां जाता हूं? अलारनाथ। और मेरा साथ कौन जाएगा? एकले रही वह तहां, मैं एकला रहूंगा, और मेरा साथ कौन रहेगा? गोविंद। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण क्या है? जब श्री कृष्ण भवानंद का आत्मज श्री गोपीनाथ पटनायक को राजवीति नष्ट कर दिया था और राजद्वार में अभियुक्त तो हुआ था, तब श्री गोपीनाथ पटनायक का उद्धार करने के लिए महाप्रभु को राजा का पास आवेदन करके कहने से महाप्रभु विरक्तिला प्रदर्शन करके करके कहे, क्या कहे? अलारनाथ जाई तहां निश्चय रही मो विषय र भाल मंद वर्तना सुनिमो। मैं भी निश्चिंत होकर अलारनाथ में जाऊंगा और ये विषय लोक का भला मंद विचार मैं नहीं करूंगा, मैं वहां जाके भजन करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहकर चला जाते हैं, फिर इसलिए कहते हैं चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ जाते हैं। तो चौथा कारण क्या है? दक्षिणात्य यात्रा करने का समय में महाप्रभु अलारनाथ होकर गए थे। नित्यानंद प्रभु अन्य भक्त लोगों को साथ में अलारनाथ दर्शन किए। अलारनाथ से महाप्रभु चतुर्भुज मूर्ति दर्शन करके अधिक से अधिक विरह में उत्क्षिप्त होकर अद्भुत प्रेमावश में नृत्य करने लगे। ब्रह्मगिरी का समस्त गांव का लोक महाप्रभु को अद्भुत नृत्य दर्शन करके करने के लिए सब एकजुट हो गए। सब लोग, गांव का जितने लोग थे, चार तरफ पूरा घिर गए, घिरे हुए पूरा चार तरफ, और सबका मुख में क्या आ रहा है? भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु का आंख से पुलों का आश्रु हो रहा है और शरीर से श्वेत मतलब पसीना, लेकिन भाव व्याकुल में होके और भगवान नाच रहे हैं। नित्यानंद प्रभु का मंदिर का अंदर चैतन्य महाप्रभु को ले लिए, सब लोग मंदिर का बाहर रह गए दर्शन निमित्त। फिर हरिनाम चल रहा था, महाप्रभु कितने भाव व्याकुल थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु वहां पे क्या बन गए, वहां पे गेट बंद कर दिए और चैतन्य महाप्रभु को घर का अंदर ले लिए, और बाहर का जितने सब भक्तगण थे सब बाहर बाहर ही कीर्तन कर रहे थे, सब कीर्तन की। ये चौथा कारण था। तो पांचवा कारण क्या है? दक्षिण देश से प्रत्यावर्तन करके महाप्रभु अलारनाथ होकर नीलांचल को आगमन किए। अलारनाथ आशी कृष्णा दासे पठाईला नित्यानंद आदि निज गणे बोलाईला। ब्रह्मगिरी का अलारनाथ श्रीमन महाप्रभु का कृष्णानुसरण लीला पराकाष्ठा का स्थान है। गौरजन और विप्रलम्ब रसाश्रित गौड़ीय वैष्णव लोक का परम प्रिय और भगवत तत्व को प्राप्त करने के लिए, तत्व को प्राप्त करने के लिए ये विशेष अनुकूल स्थान है जो कि अलारनाथ। नवदीप का जितने सब पाठुआ पाषंडी थे, पाठुआ पाषंडी, पाठुआ मतलब पढ़े हैं लेकिन जानते नहीं, पाठुआ पाषंडी और स्मार्त लोग जब महाप्रभु का विरोधी हुए थे, तब महाप्रभु उन्हीं लोग को निकट से दूर रहने के लिए संन्यास लीला को प्राप्त करके संन्यास लेके जब श्री नवदीप मायापुर से नीलांचल आए थे, फिर नीलांचल आकर जब भक्त लोग का साथ महाप्रभु का प्रेम कलह लीला हुआ, तब महाप्रभु नीलांचल से अलारनाथ गए। ब्रह्मगिरी अलारनाथ महाप्रभु का द्वितीय संन्यास लीला का लीला बा द्विगुणित संवर्धित विप्रलम्ब स्थान है जो कि ब्रह्मगिरी। और चतुर्भुज दर्शन गोपी लोक यहाँ एक महाविप्रलंब दर्शन होता है। इस रहस्य निष्कपट मुक्त भजनानंदी भक्त ही उपलब्धि कर सकते हैं, हर व्यक्ति इसको उपलब्धि नहीं कर सकते हैं। तब वहाँ पे अलारनाथ इस प्रकार भाव में जाके दर्शन करना चाहिए, किस प्रकार भाव पे चैतन्य महाप्रभु जिस भाव से गए थे दर्शन के लिए उसी भाव में जाना चाहिए दर्शन के लिए, ये अलारनाथ का है। फिर दूसरा अर्थ में कहते हैं और ये की चीज भगवान किस प्रकार आलबंदार आचार्य जिसको कहते हैं एक ही आचार्य जो होता है आलबंदार आचार्य वो किस प्रकार भगवान को दर्शन किए और वो इसी टाइम पे भी गए थे। 15 दिन जगन्नाथ मंदिर पे दर्शन नहीं होता है उसी टाइम पे वो गए थे। कहाँ से गए थे? वो गए थे साउथ इंडिया से दर्शन करने के लिए। अब इसका विषय में वशिष्ठ द्वैत आलबंदरा बीच में एम्बाड़ का प्रधान आचार्य रामानुजाचार्य पूरी क्षेत्र में प्राय 1000 वर्ष पीछे आए थे। उसी समय आषाढ़ मास हुआ था। आलबंदरा आचार्य दक्षिण देश में चलते चलते सुदूर चलते चलते पुरी में प्रवेश किए। देखे अणसर मतलब अणवसर बजाय जगन्नाथ दर्शन नहीं हो रहे, ऐसा देखकर भक्त का हृदय में दुख आया, वो दुखी हो गए। उन्होंने पागल होकर घूमने लगे चार तरफ, मंदिर के अंदर जाएंगे तो दर्शन नहीं हो रहे। सब लोग उनको कह रहे हैं भगवान का अभी दर्शन नहीं होगा, अभी भगवान 15 दिन तक विश्राम ले रहे, भगवान यहां दर्शन नहीं दे रहे। जगन्नाथ को दर्शन करने का जो लालसा था तब उनका कोई भूख प्यास पता नहीं चल रहा है और भूख प्यास नहीं लग रहा है। जब तक वो दर्शन नहीं करूंगा तब तक भी भोजन नहीं करूंगा, वो भी ऐसे भी व्रत ले चुके हैं और भूख भी नहीं लग रहा है। लेकिन उनका जो क्रंदन और संताप कोई भी प्रकाश नहीं कर पाए। सब लोग एक उत्तर देते थे जगन्नाथ अभी अणसर घर पे है। उन्होंने विचार किया जब तक जगन्नाथ दर्शन नहीं होगा तब तक इसी भूमि में प्राण त्याग दूंगा। हम लोग जितना सो बैठे हैं ऐसा हम कोई संकल्प ले सकते? बोलिए कोई ले सकता है ऐसा? हाथ थोड़ा हाथ उठाइए। नहीं ना हो नहीं सकता है हमारा लाइफ में। तो उन्होंने संकल्प लिया जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक इसी भूमि में मैं अपना प्राण को त्याग दूंगा। आचार्य ने अत्यंत निराश होकर समुद्र तरफ चल रहे थे। तब समुद्र के तरफ जाएंगे तो स्वर्ग द्वार, स्वर्ग द्वार रास्ता से जैसा जा रहे थे एक बलिष्ठ बानर उनका पीछे पीछे जाने लगा। ये आगे जा रहे उनका पीछे एक ही मोटा तगड़ा एक ही बानर जैसा वो चल रहे पीछे करने लगे। आलबंदार आचार्य स्वयं विष्णु लक्षण लांछित महापुरुष जैसा और उनका पीछे पीछे कोई देवता आ रहे जैसा उनको मालूम पड़ा। वो थोड़ा से पीछे मुड़कर देख रहे कौन आ रहा है। हे भद्रे आप किसके लिए मेरा को अनुगमन करते हो? तो आचार्य ने पूछने लगा मैं बहुत दूर से श्रीमन नारायण का तत्व विग्रह दर्शन करने के लिए आया था, दर्शन न पाकर मैंने मेरा जीवन को तुच्छ मन करता हूँ। ये बात सुनकर हनुमान अपना रूप को प्रकट करके कहे मैं स्वर्ग द्वार का श्मशान का रक्षक हूँ और वैष्णव लोक का पथ प्रदर्शक हूँ, आप निराश मत होइए। श्री जगन्नाथ वर्तमान गुप्त पूजा में है, आप उन्हीं का चरणारविंद दर्शन करना होगा तो 15 दिन दर्शन देते नहीं। आप तो वापस जा रहे हो लेकिन इस 15 दिन के बाद आप आइए फिर दर्शन हो जाएगा। हनुमान जी ऐसा बता दिया उनको। हनुमान से एक बात सुनकर आचार्य ने कहे मेरा दुर्भाग्य है जो कि भगवान दर्शन नहीं मिल रहा है, मैं निश्चय किया यह प्राण त्याग दूंगा। ऐसा विचार करके समुद्र का तीर मतलब समुद्र का किनारे चलने लगे। समुद्र का किनारे तक पहुंचने के लिए, मतलब समुद्र का पास नहीं पहुंचे, समुद्र का तीर में नहीं पहुंचे, समुद्र का पास पहुंचने के लिए चलने लगे। लेकिन भगवान का कृपा से उनका मुख थोड़ा टेढ़ा हो गया। मुख टेढ़ा हो गया मतलब मुख को घुमा लिए, ऐसा नहीं कि अपना मुख, ऐसा नहीं कि इसको ये हो गया, क्या बोलते हैं इसको, पैरालिसिस, ऐसा नहीं पैरालिसिस हो गया मुख, डॉक्टर साहब बैठे, ऐसा नहीं, मुख ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुख घुमा लिया दूसरा तरफ का। ये सब कुछ भगवान का लीला है, ये भगवान इस प्रकार उनको दर्शन देना चाहते हैं, ये भगवान का लीला। तब उन्होंने दिशा परिवर्तन होकर दक्षिण पश्चिम कोणा को चलने लगे। जाते जाते रात्रि बीत गया, सारा रात ही चल रहा है, रात भी बीत गया, और उन्होंने अधैर्य होकर समुद्र का पाने के लिए व्यतिव्यस्त हो गए। तब उसी समय स्वयं नारायण चतुर्भुज रूप में एक ही तालाब में दंडायमान है, तालाब मतलब सरोवर। तब प्रभु को देखकर आश्चर्य हो गए, नारायण का दिव्य वेश में व्यतिक्रम इतस्तत अवस्था को देखकर कहे, हे वरेण्य, आपका कौष्ठव मणि कहाँ है? ऊर्ध्वपुंड्र जो चंदन, वो भी कैसा मिट गया है, पीताम्बर कौस्तुभ, पीताम्बर इधर उधर हुआ है, और कौस्तुभ जो मणि धारण करते वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, पहने कि नहीं पहने है। मैं आपका ऐसा अलबेला रूप, अलबेला रूप नहीं देखना चाहता हूं। आप तो दर्शन नहीं दे रहे थे ठीक है, और ऐसा रूप तो ठीक है, लेकिन ऐसा विवर्ण विसर्ण विग्रह रूप में दर्शन मत दीजिए। आचार्य ने अलबेला नारायण को कहे, वर्तमान में मेरा गुप्त पूजा में सबरी का पकफल भोजन करने में करके सुख अनुभव कर रहा था, अभी आपका दृढ़ता को देखकर और आप प्राण त्याग करने का संकल्प को मैं सहन नहीं कर पाया। आपको क्षेत्र में दर्शन करने का फल मिला है, मैं जा रहा हूँ, भगवान ऐसा कह के करके। इतना सुनकर परम भक्त अलबंदर एम्बाडियम प्रार्थना किए, हे प्राण प्रिय प्रभु, आपका महान पावन पूरी क्षेत्र को कलयुग में बहुत भक्त इस समय में दर्शन पाने के लिए आएंगे, मात्र अज्ञात अज्ञान अवस्था में मेरा जैसा दशा हुआ ऐसा ही सबको होगा। इसमें भक्त और भगवान को कष्ट तब आप यहाँ पूर्ण दिव्य देह में विराजमान कीजिए। आपको इस अनवसर समय में भक्त लोग को दर्शन करके पुरुषोत्तम क्षेत्र में दर्शन करने का फल प्राप्त होगा। भक्त का ऐसा भाव को प्रभु नहीं तोड़ पाए। तब दिव्य देह धारण करके संलक्षण आयुध युक्त होकर विराजित है वही महनीय श्रीमन नारायण विग्रह अलबंदरनाथ नाम में विख्यात है। तब लोक भाषा में आलारनाथ कहते हैं, प्रभु को अनवसर समय में दर्शन करने का विधान है, तब से प्रचलित प्रथा है। न पश्यत गुप्त पूज्यायम दारु ब्रह्म सनातन तदा भवेतु संपूज्य शरतिरे यथा सुखम शंख चक्र गदा पासे अलबंदर संज्ञकम पीताम्बर धर्म देवम नारायण बिलोकयेत। तब वहाँ पे चतुर्भुज रूप में भगवान दर्शन देते हैं, कहाँ पे? अलारनाथ पे। लेकिन आप कभी अलारनाथ को दर्शन करने के लिए जाएंगे, उनका शरीर में कुछ सिंबल है, शरीर में जब बटू ब्राह्मण भगवान को भोग लगाया था, क्या भोग लगाया था? खीर। तब खीर भगवान बहुत जल्दी जल्दी, वेरी फास्ट, इसलिए कहते हैं ना फास्ट फूड, हो सकता है फास्ट फूड जल्दी जल्दी बन गया और फास्ट फूड भोजन कर रहा है, ऐसा नहीं। इसलिए कभी भी हर व्यक्ति बोलता है फास्ट है, देखिए फास्ट ट्रेन, फास्ट फूड, फास्ट क्लास, फास्ट एसी, हैं, फास्ट डिवीजन, सब है ना फास्ट है, सब चाहते हैं फास्ट, फास्ट क्लास है कि नहीं। तो भगवान भी वहां पे भी भोजन करने का टाइम भी फ्री फास्ट किया है। और गरम खीर था, कैसा खीर था? गरम खीर था। तर तर रे खाओ खाओ छिटकी गला मेचे जाऊ, तर तर रे खाओ खाओ छिटकी गला मेचे जाऊ। उड़िया भाषा समझ में आ रहा है यार। तर तर में मतलब जल्दीबाजी में भगवान भोजन कर रहे हैं, खाओ खाओ मतलब खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। छिट्टी के गला मेंचे जाऊ, जाऊ मतलब वो खीर को उड़िया भाषा में जाऊ भी कह लेते हैं। तब वो जब वो भोजन कर रहे थे, इतना जल्दी में खा रहे थे, तब छिट्टी गया मतलब छाती में गिर गया और मुंह में और नीचे लगा, आगे आता है। कबाट के हेबा सुनी हाथ बड़ा है देवमणि। बटू ब्राह्मण का पिताजी जब दरवाजा खोले बोला कबाट के हेबा सुनी, कबाट मतलब दरवाजा आवाज हुआ होता है ना, दरवाजा में बटू ब्राह्मण का पिताजी आवाज नहीं दिए, इमीडिएटली दरवाजे को खोल दिए, खोल के हाथ तो बड़ा है देवमणि। मुहरे लगिला मेंचाए छातीरे मेंचे पड़ी रहे। और जब भगवान भोजन कर रहे थे कुछ मुख में लग गया और कुछ छाती में। मुहरे बाहरे फुटका गरम जाऊर छिटिका, और मुख में और छाती में और फिर हाथ, ये तीन जगह पे क्या हुआ, गरम खीर लगने के बाद जल गया। आप कभी भी आप अलारनाथ जाते हैं, ये तीन निशान जरूर दर्शन कीजिए, वो आपको दर्शन कराएंगे। जब अलारनाथ को गला में माला धारण करते हैं तो वे माला का नीचे छुप जाता है, छाती में जो खीर पड़ा है गरम खीर वो जल चुका है, हाँ, और वो निशान आपको दिखाई देगा, वो निशान है ऑलरेडी, लेकिन ब्राह्मण को बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2001 रुपया नोट दे देने से दर्शन दे देगा, क्यों अभी 2000 चल रहा है ना, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी जो भी दक्षिणा देने से थोड़ा दक्षिणा प्रिय होते हैं ना, सब लोग तो दक्षिणा प्रिय होते हैं, थोड़ा दक्षिणा देने से वो दर्शन कराते हैं, लेकिन छाती को जरूर दर्शन कीजिए। और हाथ तो ऐसा ही रखा है ऑलरेडी, दाएं हाथ जल चुका है, ये तीन अंगूठे ऐसा ही जल चुका है, हाँ, और पूरा, हाँ, तब हाथ भी है और वहाँ पे चिटका लगा हुआ है मुख में भी, एक खीर का एक टपक पूरा गरम। फोटका छीन आजी जाके शोभा पाऊ छी तुम्भ मुखे। ये जो फोटका मतलब जो गरम खीर का फोटका लगा हुआ वो शोभा पाऊ छी तुम्भ मुखे, ये आपको शोभा दे रहा है, आपका मुख में दर्शन करके शोभा पा रहा है। ये तीन निशान अलरनाथ आप जाते हो तब दर्शन करना है। तब चैतन्य महाप्रभु कैसा फिर वहां आते हैं, कलिजुग फिर दूसरा अर्थ में कहते हैं, फिर और ये कि भगवान को जब भोग लगाते हैं, कभी कभी है मन से ही भगवान को भोग लगाया जा सकता है, जानते हैं ये, एक ब्राह्मण भगवान को मन से ही भोग लगाया था, जानते नहीं जानते हैं, हाथ उठाइए, जानते हैं ना, कहाँ का ब्राह्मण था, माताजी दो हाथ उठा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तब मन से ही भगवान का सेवा कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्थिति अभी ऐसा नहीं है, है क्या ऐसा है, नहीं है स्थिति। तब उन्होंने मानसिक स्तर पर वही खीर लगाया था, उन्होंने कोई प्रवचन में सुन कराया था वो साधु ने, तब साधु सुना भगवान को भी मानसिक स्तर पर सेवा होता है, तब उन्होंने भगवान को मन से ही खीर बनाया और मन से ही भगवान को ऑफर किया, वो भी था गरम, वो कैसा था, गरम था, लेकिन भगवान उसी टाइम पे सामने प्रकट होकर भोजन नहीं किए थे, लेकिन भगवान क्या कहाँ थे, वैकुंठ लोक में थे, वैकुंठ में रह के वो लीला को आस्वादन कर रहे हैं, भक्त का लीला को आस्वादन कर रहे हैं। भक्त कैसा लीला करता है? भक्त का लीला और भगवान का लीला में ये बहुत घनिष्ठ संबंध है। भक्त यहाँ पे भगवान को भोग लगा रहा है और भगवान वहां पे क्या, वहां पे लेटे है और लक्ष्मी जी वहां पे पैर को संभाषण कर रहा है, पैर को दबा रहा है। अभी का टाइम पे तो कोई पत्नी पैर को नहीं दबाएगा, मुख में दबाता है और वहां पे पैर दबा रहा है। वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी पैर दबा रहे थे, तब जब दबा रहे थे तब भगवान ये लीला को देखिए, भक्त का लीला को देखिए, भगवान थोड़ा मुस्कुराए। यहाँ पे भक्त गोदावरी में नदी पे गया, स्नान किया, स्नान करने के बाद जो सुना था उसी हिसाब से मन से लाया, पात्र लाया, खीर बनाने के लिए पात्र लाया, पात्र के बाद दूध भी मन से लाया, तो फिर चीनी लाया, सब कुछ इकट्ठा किया, इकट्ठा करके पात्र को गर्म किया। गर्म करने के लिए क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए ना, लकड़ी चाहिए, ईंधन। तब फिर उसको गर्म होने का बाद फिर दूध गर्म हो गया, दूध उबल रहा है, उसमें चीनी डाला, फिर चावल डाला। पहले चावल डालते पहले चीनी डालते, सबको मालूम है। तब ठीक है, उसी हिसाब से उन्होंने बनाया। बनने का बाद खीर बन गया। खीर बनाने के बाद एक कटोरी में निकाला, कटोरी में निकाल के तो भगवान को ऑफर कर रहा है। हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, फिर मन में सोचा, बोला बहुत गर्म है, तो मन में सोचा, मन में सोच के क्या किया, हाथ को डुबाया। हाथ को डुबाते हुए वहाँ पे वैकुंठ लोक में भगवान हंस लिए। ये मन से भगवान को भोग लगा रहा है और भगवान वहाँ हंस रहा है। यहाँ पे भक्त का हाथ जल गया, यहाँ पे स्वयं आलानाथ में भगवान स्वयं का हाथ जल गया, सही। तब वहां पे तब मन से जब भगवान को भोग लगाया था तब हाथ जल रहा है, तब लक्ष्मी जी पूछा, प्रभु आप क्यों हंसे, क्यों मुस्कराया? तब प्रभु स्वयं कहने लगे, मेरा भक्त वहां पे मेरा को खीर लगा रहा था। तब स्वयं भगवान नारद जी को आदेश दिए, जाओ वो भक्त को लेकर आओ। तो भक्त को लेकर आए, नारद जी आकर उनके पास पहुंचे, उनको लेकर गए। तो वह भक्त का सामने खड़ा करके बताए, बोले ये भक्त मेरा के लिए भोग लगा रहा था, सीधा भोग लगा रहा था, और जो खीर भोग लगा रहा था वो खीर गर्म था, गर्म होने का नाते तब हाथ जब डुबाया तो उनका हाथ जल गया, तब मैंने हंसने लगा। भगवान को मानसिक स्तर पर सेवा हो सकता है, लेकिन ऐसा स्थिति हमारा नहीं है, हम हर चीज़ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा अभी। और भगवान बैठ कर भोजन करते हैं, लेकिन भाव होना चाहिए, आस्वादन करते हैं। भगवान इतने दयामय है। तब कलयुग में चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार आलानाथ में जाते हैं दर्शन करने के लिए। कलयुग तारण से पवन अवतार, श्री कृष्ण चैतन्य रूप सर्वगुण गार, महाभावे से ठाकु गमंती भी धीरे, महाप्रभु अणसर घरे बिजेले, सकल वैष्णव गण तेमंत करांति, अभावरे विष्णु मुख सेठावे देखंती। चैतन्य महाप्रभु जिस भाव से, जिस विधि से अणसर जगन्नाथ अणसर घर पे रहने का बाद जाते हैं दर्शन करने के लिए, उसी भाव को लेकर वैष्णव लोक जाते हैं, यही भाव को लेके जाते हैं आलारनाथ दर्शन करते हैं। प्रभु चैतन्य जार नाम गुण सा, नित्य तही सड़ंगे नमंती अपार। प्रभु चैतन्य जार नाम गुण सार, नित्य तही सड़ अंगे नमंती अपार। और वहां पे एक षडभुज गौरांग का विग्रह भी है आलानाथ मंदिर का बैक साइड में, जाएंगे तो वो भी दर्शन होगा। से ही क्षेत्र साष्टांगर चिन्ह अछि पड़ी, जही हरि दर्शन सुख पांति गड़ी। चैतन्य महाप्रभु जब व्याकुल होकर अलारनाथ गए थे, तब वो पत्थर का ऊपर छटपट हुए दर्शन करने के लिए। और उड़िया भाषा में कहते हैं गड़ी, गड़ी मतलब लेटे। जब लेटे तब वो पत्थर संपूर्ण क्या हुआ, पिघल गया। भगवान का जो व्याकुलता, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ये भक्त का व्याकुलता को लेकर गए थे। भक्त भगवान को कैसा दर्शन करना है, ऐसा व्याकुलता से वो पत्थर क्या हुआ, पिघल गया। ये भाव होना चाहिए। इसी भाव से दर्शन, ये भाव होना चाहिए इस प्रकार दर्शन करने के लिए, नहीं तो कैसा। चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते हुए इमीडिएटली वो पत्थर पिघल गया, और पत्थर में अभी भी आप जाएंगे वो निशान सब रखा गया, सब निशान है। दोनों घुटनी है, और क्या है, दोनों हाथ का निशान है, सिर का निशान है, पैर का निशान है, और छाती कहाँ लगा हुआ था उसका निशान है, और कैसा गड़गड़ा है वो सारा निशान है। वो पत्थर बहुत कम से कम लगभग 6 फुट बाई 6 फुट होगा। वो पत्थर को सुरक्षित रखा गया अभी, और वो पत्थर को सुरक्षित रखने के लिए भुवनेश्वर इष्कन का मंदिर का तरफ से किया गया, वो बहुत बड़ा एक हॉल बना गया है, बहुत बड़ा। इसी प्रकार बलराम हॉल से और थोड़ा बड़ा होगा, इस प्रकार का हॉल बना गया। उसी हॉल का छोटा सा एक घर बना गया, उसी घर का अंदर पत्थर को रखा गया है। और वो जो हॉल है वहाँ पे थोड़ा सत्संग का भी होता है, कई भक्त लोग को जाके थोड़ा प्रसाद ले लेते हैं, उस प्रकार की बहुत अच्छा जगह है। तो चैतन्य महाप्रभु इसी भाव में गए थे दर्शन करने के लिए। जही हरि दारा सेई क्षेत्र साष्टांगर चिन्ह अच्छी पड़ी, जही हरि दर्शन सुख पांति गड़ी। महाअण सरे जेहू अलाल भजंती, भक्ति मुक्ति लभीण सर्व सुख पांति। महाअणसर, जब भगवान जगन्नाथ दर्शन नहीं देते हैं तब वहां पे जाकर कोई भजन करता है, भक्ति मुक्ति लभीण, भक्ति को प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा, मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगा और शांति को प्राप्त हो जाएगा। सुख शांति तो प्राप्त होगा ही होगा, क्योंकि भगवान का जो भजन करने वाले है उनके पास दुख आएगा नहीं, दुख एक ही पर्दा एक ही झलक आएगा हर व्यक्ति के लिए, एक ही दुख आएगा। और जो भी दुख आता है भक्त के सामने एक झलक है, ये झलक इसलिए आता है, ये परीक्षा लिया जाता है। और भगवान हमेशा के लिए भक्त को परीक्षा लेते हैं, जब तक परीक्षा नहीं लेंगे तब तक भगवान मिलना इतना आसानी नहीं है। हर भक्त के लिए आप जितने सब लिस्ट देखिए, भक्त जितने सब भक्त का नाम बताइए, हर भक्त के लिए कुछ ना कुछ परीक्षा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, परीक्षित महाराज के लिए कितना बड़ा परीक्षा मिला। क्या परीक्षित महाराज को भगवान गर्भ का अंदर जब रख पाए, गर्भ का अंदर रख दिए, तब क्या भगवान वहां पे नहीं बचा सकते थे, वो अभिशाप को खंडन नहीं कर सकते थे, एस और नो कर सकते थे। लेकिन भगवान एक लीला कर रहा है, भक्तों का कितना व्याकुल है। और परीक्षित महाराज से गर्भ का अंदर बाहर से निकला, जब निकलते हुए इमीडिएटली चारों तरफ ढूंढ रहा है, इसलिए कहते हैं एग्जाम कर रहा है, इसलिए परीक्षा कर रहा है, कौन भगवान है, कौन मेरा को बचाया है। अशुत्तमा अस्त्र से, अस्त्रमा जो ने अस्त्र पे था, और उसका अस्त्र से मेरा कौन रक्षा किया, और बाहर आते हुए परीक्षा कर रहा है, कौन मेरा को बचाया, इसलिए तो उसका नाम परीक्षित पड़ा, परीक्षा किया ना, इसलिए परीक्षित पड़ा नाम, तो परीक्षित पड़ा। भक्त के लिए परीक्षा बहुत आएगा, जीवन में बहुत परीक्षा आएगा, ये सब परीक्षा इसलिए है, एक ही झलक है, एक ही झलक है, एक ही पर्दा है आपका सामने, लेकिन इसको क्रॉस करना चाहते हो हमेशा के लिए भजन से हटना नहीं, अपना दृढ़ता से, अपना निष्ठा से, अपना भक्ति से कभी हटना नहीं चाहिए। जो संकल्प लिया ये संकल्प से हटना नहीं चाहिए। 64 माला करना चाहते हो करते रहो 64 माला, संकल्प लेना है जो संकल्प लिया, 16 माला करना है 16 माला, रेगुलर मंदिर आना है आना है, मंगलारती आना है रेगुलर, ऐसा इतना ठंडी हो गया नहीं जा पाऊंगा। अभी बहुत सारे भक्त लोग होते ठंडी हो गया तो नहीं जाएंगे ये नहीं सोचना चाहिए, एक संकल्प, बहुत सारे माता लोग है जो कि एक दिन भी मंगल आरती मिस नहीं किए, हम नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन बहुत सारे माता लोग इस प्रकार के है, प्रभु लोग भी है, लेकिन इस प्रकार संकल्प तो भगवान कभी भी। और जो दुख एक क्षण के लिए आता है, और दुख को आप दुख को देखते हुए ऐसा नहीं कि भक्ति को छोड़ दे, जानना चाहिए। तब तो इसीलिए हमको हमेशा के लिए, तब भक्ति मुक्ति लभिण सर्व सुख शांति। तब महाअण सरे जेहु प्रभु जगन्ना से रूप प्रकट अलावरना। जगन्नाथ जब अणसर घर पे रहते हैं सही रूप में, वहां पे जगन्नाथ चतुर्धा मूर्ति रूप में दर्शन जो देते थे, और चतुर्धा मूर्ति को दर्शन करने मात्र से जो फल मिलता था, और वही अणसर घर पे जगन्नाथ जब रह जाते हैं तब आलारनाथ में वही चतुर्भुज रूप में दर्शन नहीं करके चतुर्भुज रूप में दर्शन करते हो, वही फल प्राप्त हो जाता है। सही रूपरे प्रकट अलावर नाथ महाअण सरे जेवा ए चरित पढ़े जगन्नाथ पद प्रांते तावकति बढ़े। महाअणसर पे जब अणसर भगवान को जब जगन्नाथ दर्शन नहीं होता है, तब उसी टाइम पे जगन्नाथ का चरण कमल पे बैठ के, मतलब आलारनाथ पर बैठ करके कोई उन्हीं का चरित्र को वर्णन करता है, कोई पढ़ता है, कोई सुनता है, हाँ, उसका भक्ति क्या होता है, बढ़ता है। अलवर नाथ पद कमल रे मोर मति मोर अणसरे रहु निरंतर गति मोर। अलवर नाथ पद कमल रे मोर गति मोर अणसरे रहु निरंतर। मैं उनका चरण कमल को प्रार्थना करता और उनका चरण में मेरा भक्ति के साथ बढ़ते रहे, ये प्रार्थना करते हुए ये सब कहते हैं। ऐसे आलारनाथ के गुणगान और वहीं पे बैठ के कोई करता है, और अणसर टाइम पे 15 दिन जब जगन्नाथ दर्शन नहीं होता है, उसी टाइम पे कोई वहाँ पे जाकर बैठ के उनका बारे में चर्चा करता है, सुनता है और बोलता है, उनका भक्ति बढ़ता है। जय जगन्नाथ। इसलिए कहने का तात्पर्य यही रहा, आज का दिन में यहीं पे हम विराम देंगे। ये आलारनाथ का बारे में, और आलारनाथ के बारे में और कुछ बोलने के लिए था, लेकिन यहाँ तक इतना ही है। लेकिन सब लोग अपना अपना स्थान पे बैठ रहे, अभी 5-10 मिनट में प्रसाद आएगा, सबके लिए प्रसाद भी है। और दूसरा अर्थ में कहते हैं, आप ये 3 दिन तक कथा कंटिन्यूस होगा, 3 दिन कथा चलेगा, लेकिन टाइम पर आइए। मेरा हमेशा के लिए टाइम सेट पूरा पंक्चुअलिटी है, प्रॉपर टाइम पे आएंगे, प्रॉपर टाइम पे हाँ प्रवचन को ख़त्म करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 6:30 बजे आप आएंगे 6 बजे, तब आधा घंटा सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन अपना अच्छा जो लीला रहस्य को आपको छोड़ देंगे, वो सही चीज़ को आप पकड़ नहीं पाएंगे। ये बहुत गुह्य रहस्य है, जो चीज को आप पढ़ने मात्र से, और ये चीज आपको कोई किताब में मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, और ये सारा कुछ उड़िया किताब में है, लेकिन उड़िया किताब उड़ीसा का लोग पढ़ लेंगे, आप लोग कौन सा किताब पढ़ेंगे? उड़िया किताब कोई पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। उड़िया भाषा जगन्नाथ का आंख जैसा, जगन्नाथ का आंख कैसा है? गोल है, और उड़िया भाषा भी अक्षर है इस प्रकार की, गोल है। इसीलिए तब उड़िया भाषा आप नहीं पढ़ सकते, तब कि उड़िया भाषा भी नहीं समझ सकते, भाषा तो समझ जाएंगे, क्योंकि अभी आप लोग इस्कन में जुड़ गए ना, इस्कन में जुड़ने के नाते इस्कन में, इस्कन एक ही सर्वधर्म संस्था है, लाइक दिस सर्वधर्म, और इसमें सब धर्मावलंबी मिल गए, लेकिन सब लोग सर्वधर्म होने का नाते एक ही को पूजा करते, किसको? किसको? कृष्ण जो है वही जगन्नाथ, वही गौर है, चैतन्य महाप्रभु वही है, लेकिन इसमें कोई ये नहीं, लेकिन उनको पूजा करते हैं। कहने का अर्थ है, तब ये जानना है, हम लोग उड़िया भाषा भी समझ जाते हैं, थोड़ा बहुत तो समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग बात होता है। कभी किसको भोजन कोई दे रहा है, भोजन देने का टाइम पे हम कभी बोलते हैं उड़िया भाषा में बोले, और कुछ चाहिए, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, और कुछ चाहिए, और वो उड़िया भाषा में बोलेगा, क्या बोलेगा, अब कौन दरकार है की। लेकिन फिर भी वो समझ जाएगा, सही कि नहीं। उड़िया भाषा भोजन के टाइम पे कोई परोस रहा है और वो भाषा कुछ भी मालूम नहीं, और उड़िया भाषा आया, उड़िया भाषा में आपका घर पे आप बुलाया, तब वो उड़िया में बोलेगा, तो आप कुछ ना कुछ एक ही अंश भी समझ जाएंगे, कुछ ना कुछ समझ जाएंगे। ये भाषा का अंतर ये नहीं है, क्योंकि सबका हृदय का अंदर जगन्नाथ है ना, कृष्ण है ना, परमात्मा रूप में समझाने के लिए वो समझाते हैं ये क्लियरली। तो कहने का अर्थ है, तब उड़िया भाषा में आप ये सारा चीज़ को मैंने नोट किया है, इसलिए नोट करके आपको बता रहा हूँ। हो सकता है हिंदी में थोड़ा त्रुटि रहता होगा, क्योंकि उड़िया से हिंदी को इतना ट्रांसलेशन करना इतना आसानी नहीं है, फिर भी हम थोड़ा बहुत बता रहे थे, कुछ गलती रहता है तो आप लोगों को क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। क्योंकि आप लोग सब समझ जाते हैं ना, नहीं समझते? कितना लोग नहीं समझते है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है ना, प्रश्न उल्टा कर पूछना पड़ता है, सही है कि नहीं है? तब आज क्यों प्रसाद लेट है, मैं उनको बताया था 6:15 बजे तक प्रसाद पहुंच जाना चाहिए, हो सकता है पहला दिन, क्योंकि प्रसाद तो वहाँ पे बन रहा है, आप लोग को मालूम है कि नहीं, कहाँ पे बन रहा है मालूम है, कहाँ पे बन रहा है, गोलोक में, गुरुकुल में बन रहा है, तो गोलोक से आने के लिए थोड़ा सा लेट होगा, तो गाड़ी में बाईपास रास्ता से आएगा, तो इसलिए तब और वहाँ बनकर आ रहा है। और उसका जो भी आप लोग का 3 दिन का जो प्रसाद है, 3 दिन का प्रसाद का कुछ भी छोटा मोटा सेवा करना चाहते हो फिर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो माताजी आए थे, माताजी ने कुछ ना कुछ थोड़ा से ये करके गया, क्योंकि कार्तिक महीना में बहुत सारा सेवा किया है माताजी ने, माताजी आकर मेरा बोल के आज चले गए बेंगलोर। तब ये कहना हो आपको, कोई भी आप लोग का श्रद्धा से ये प्रसाद का सेवा करना चाहते हो, और भगवान भक्त को, भगवान का भक्त को आप लोग खिलाते हो, तो भगवान 2 मुख में खाते हैं, बता सकते हैं 2 मुख में भगवान खाते हैं, किस में, एक ही भक्त का मुख से, दूसरा हवन कुंड से, जब आहुतियाँ दे जाते हैं तब वहाँ से 2 मुख से खाते हैं, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया जब भक्तों को खिलाते हैं, इसलिए भक्तों को खिलाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्त लोग को कभी कभी घर पे बुला कर खिला सकते हैं, कभी सत्संग में बैठ कर खिला सकते हैं, कभी मंदिर के लिए दान दे सकते हैं, जिस प्रकार जो भी है, इसलिए ये है। और हम कल चर्चा करेंगे खिरचुरा गोपीनाथ, और जो खिरचुरा गोपीनाथ है इनका बारे में थोड़े से आपको थोड़ा ब्रीफ दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक प्रसाद नहीं आ रहा है, तब खिरचुरा गोपीनाथ को हाँ किस प्रकार और कौन इसको प्रकट कराया था, और खिरचुरा गोपीनाथ आप जाते हैं तो कम से कम पुरी से आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से रात को ट्रेन पहुँचता है, बड़ा परेशानी है, कोई भी ट्रेन जाता है सब रात को पहुँचता है, रात में जाके वहाँ पे रहना, कौन सा गेस्ट हाउस खुला है नहीं है, इसलिए आप लोग को सूचित इतना देना चाहता हूँ, आप लोग डायरेक्ट भुवनेश्वर चला जाना अच्छा है, डायरेक्ट भुवनेश्वर जाके वहाँ से बाई टैक्सी नहीं तो बाई बस जाता है, इस्कॉन मंदिर का सामने बस चलता रहता है, हर 5 मिनट में बालेश्वर, बालेश्वर करके जगह है, उसी जगह जाना है, वहाँ से बालेश्वर बस स्टैंड से उतर के ऑटो मिल जाता है, जैसे मथुरा में उतर के वृंदावन आ जाते हैं उस प्रकार वहाँ से फिर ऑटो मिल जाएगा आपको खिरचुरा गोपीनाथ, और वहाँ जाना जरूर, और खिरचुरा गोपीनाथ में खीर जरूर खाना, क्या खाना, खीर जरूर खाना, और वो खीर वो सारा विश्व के लिए प्रसिद्ध है, सारा विश्व के लिए प्रसिद्ध है, और वो खीर को खाने के लिए कौन सा भक्त का नाम से, हाँ माधवेंद्रपुरी, वो खीर को खा के, खीर तो खाए तो खाए, खीर का जो कटोरी था, कटोरी मतलब जो पात्र था उसको भी खा लिए है कि नहीं, इसीलिए है वो खीर बहुत प्रसिद्ध है, वो खीर जाके प्रसाद लेना है। और भुवनेश्वर से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 180 किलोमीटर दूरी पर वो है, ज़्यादा से ज़्यादा 180 किलोमीटर 180 किलोमीटर, और आपको सुबह मंगलारती के बाद इमीडिएटली निकल जाना है, जगन्नाथ मतलब हमारा जगन्नाथ मंदिर का, आप मंदिर से रहते हो तो थोड़ा सा आप दूर पड़ जाएगा, लेकिन भुवनेश्वर से आपको बता रहा हूँ, भुवनेश्वर में इस्कन मंदिर में मंगलारती हो गया, मंगलारती के बाद इमिडिएटली निकल जाना चाहिए। मंगलारती के बाद आप एक टैक्सी कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 आवर लगेगा, नहीं तो 4 घंटा लगता ही लगता है। वहाँ जाके आप पहुँच के फिर दर्शन होगा। कोई कोई भक्त लोग का इच्छा होता है मंगलारती दर्शन करने के लिए, बहुत सारे भक्त लोग का इच्छा होता है एक बार आए तो मंगलारती दर्शन, मंगलारती दर्शन के लिए 1 नाइट स्टे करो, नॉट एक दिन आप वहाँ पे रहते हो फिर अच्छा से। और वहाँ गाँव का दूध जरूर पीना है, वहाँ पे एक ही गौड़ो बस्ती है, गौड़ो बस्ती बोलते हैं जो बेहरा होते हैं, जो दूध निकालने में होते हैं, ग्वाल बोलते हैं, ग्वाल है ना, ग्वाल बोलते हैं, वहाँ एक ही बस्ती है, मतलब एक ही गांव है, और वहाँ पे जाके आप दूध जरूर पीना है। और सब देसी गाय है, अभी तो सब 1/4 हो गए हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा देसी गाय। और उड़ीसा में ज़्यादा से ज़्यादा गाय का हाइट ज़्यादा हाइट नहीं है, बड़े बड़े नहीं है, कितना हाइट है सब बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन कम दूध देते हैं, लेकिन जो दूध बहुत मीठा लगता है, लेकिन वो दूध में आपको चीनी नहीं डालना पड़ेगा। और संसार में जितना आप दूध आ रहे हैं, हर दूध में चीनी डालना पड़ता है मीठा बनाने के लिए, सही है कि नहीं, वो ऑटोमेटिक दूध इसी प्रकार की है। और ये सब कुछ भगवान का लीला है, वहाँ का जो दूध है, इसलिए वो दूध में जो स्वीट राइस बनता है हाँ गोपीनाथ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और स्वीट राइस को एक कोड़ुआ छोटा छोटा पात्र होता है, उसी में भगवान को भोग लगा जाता है, उसी में भोग लगता है, और उसी में भोग लगाने के बाद और वही पात्र को ही बेचते हैं, वही पात्र का साथ, ऐसा नहीं कि बड़ा मटका में बना दिया और आपको बेच रहे हैं, ऐसा छोटे छोटे पात्र होता है, छोटे पात्र में कोई 20 रुपया, कोई 30 रुपया, कोई 50 रुपया में लेता है, उस प्रकार उनको दिया जाता है। इसलिए खिरचूरा गोपीनाथ में इस प्रकार दर्शन होगा कल, और परसों होगा साखी गोपाल, परसों साखी गोपाल। कितने भक्त लोग को साखी गोपाल दर्शन किया, बहुत। और साखी गोपाल आप दर्शन करते हो, वहाँ पे प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु कुछ भी हमारा अपराध रहता है, कुछ भी हमें पाप किया है, सारा पाप को हमको मुक्ति करा दो, मैं आपका भजन अच्छा से करूँगा, और मेरा हृदय में आप, मेरा चित्त में, मेरा मन में बैठ के, और जब भी कोई भी मेरा दुश्मन मन के आ जाए, कभी कुछ हो जाएगा मेरा जीवन में, तब आपको साखी देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, ये प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, यही प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आप हमारा उद्धार करता है, तब हमारा सामने वही हमारा साथ जो संपर्क है, ये संपर्क हमारा बना रहे हैं, तब और हम ये संपर्क को कभी तोड़ेंगे नहीं, और हमेशा के लिए मेरा दिल से बैठ के, मेरा मन से बैठ के, और आपका नाम भजन कर सकता हूँ, कैसा ये भाव होना चाहिए, ये भाव को रखते हुए साखी गोपाल को दर्शन करना चाहिए। और साखी गोपाल में थोड़ा से परेशानियाँ तो है, आप लोग को मालूम होगा, पंडे लोग को थोड़ा परेशानी करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी शांत हो गए, अभी थोड़ा शांत है, नहीं पहले बहुत बहुत दुष्ट थे हाँ, लेकिन अभी थोड़ा शांत है, क्योंकि गवर्नमेंट इस प्रकार की है, गवर्नमेंट इमीडिएटली थोड़ा बहुत कुछ होता है ना, इमीडिएटली क्या करता है, सस्पेंड कर देता है, उनको बाहर निकाल देता है। अभी पूरी मंदिर में इस प्रकार की, पूरी मंदिर में कोई भी थोड़ा कुछ भी गलती व्यवहार करे, गलती भी कुछ भी करेगा, इमीडिएटली उनको सजा दिया जाता है, इमीडिएटली। और इसलिए जो वहाँ का सरकार है बहुत टाइट है, जगन्नाथ मंदिर में कुछ भी कोई गलती थोड़ा बहुत करता है इमीडिएटली सजा। अभी एक एक एसपी डीएसपी को सस्पेंड कर दिए हैं, मंदिर का एसपी डीएसपी पे, मंदिर का एसपी डीएसपी भी होते हैं, वो मंदिर का भी इस प्रकार की है, कभी भी कुछ किसी को नहीं देखा जाता है हाँ, इस प्रकार अभी थोड़ा, इसलिए साखी गोपाल मंदिर पे जितने सब पंडे लोग हैं थोड़ा अभी शांत है, आप लोग आराम से जाना है। लेकिन मेन है, दर्शन करने के लिए जाते हो तब वो टाइम पे क्या करना चाहिए, कोई भी पंडा आपको कुछ भी बोलते हैं ना, हमेशा के लिए आप मुख नहीं खोलने का, क्या करना है, मुख नहीं खोलना है, वहाँ टाइम पे आप गूंगा बन जाना चाहिए उसी टाइम तक, ऐसा नहीं हमेशा के लिए गूंगा बन जाए उसी टाइम तक गूंगा बन जाना है, कुछ नहीं बोलने का, वो कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, आप मुख में कुछ नहीं बोलने का, मुख से कुछ नहीं बोलने का, गूंगा बन जाने का, और जो कुछ बोलेगा हाँ जी बस नमस्कार कर देने का, हरे कृष्णा जो कुछ बोल देने का, बस चला जाने का, क्योंकि वो हमारा तिलों को देखते हुए ऑटोमेटिक समझ जाते हैं वो इस्कॉन से आए हैं, और माल उनका पास माल ही माल होगा, तो वो ये लोग को समझ जाते हैं, इसलिए कुछ नहीं है। लेकिन आपका जो श्रद्धा है आप दान पेटी में डालो, कुछ भी करो, कोई नहीं, लेकिन पंडे लोग का साथ कुछ भी, और उनका साथ कभी आप वार्तालाप करते हैं कुछ ना, बाई मिस्टेक में कुछ बात हमारा मुख से निकल गया, बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, ये धाम है, इसलिए हम लोग को इस प्रकार का बात नहीं करना चाहिए। थोड़ा से कोई जाके गुरुकुल में ये कर सकते, थोड़ा अच्छा रहेगा। एक ही भक्त कोई चला जाए थोड़ा गुरुकुल, एक ही भक्त गुरुकुल में जाकर देख लीजिएगा प्रसाद आने के लिए, क्या लेट क्यों। तब साखी गोपाल में जाके इस प्रकार भाव से दर्शन करते हैं। तब तीसरा दिन हम साखी गोपाल का बारे में बताएंगे। तब आप लोग जरूर एक बार जगन्नाथ पुरी जाया करें। बहुत सारे भक्त लोग का इच्छा है मेरा साथ जाने के लिए। कितने भक्त लोग का इच्छा है? सही, सब तो हाथ उठा रहे, कोई दो हाथ, कोई चार हाथ उठा रहा है। चलिए ठीक है, हम टाइम थोड़ा देखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं नामहट का तरफ से जाएंगे तो अच्छा है। नामहट का व्यवस्था कर रहा है और वहाँ जाना है तो कम से कम 7 दिन का प्रोग्राम रखते हैं। 7 दिन का प्रोग्राम इसलिए पूरी के अंदर ही 7 दिन बीतेगा। पूरी का जो साइड सीन है दर्शन करना है और पूरी मंदिर का अंदर दर्शन करना है। पूरी का अंदर, पूरी शहर का अंदर, पूरी शहर का बाहर और पूरी मंदिर का अंदर, ये कम से कम 7 दिन आपको रहना चाहिए। एक ही हफ्ता के लिए प्लान बनाना चाहिए। पूरी का बाहर आप क्या क्या दर्शन करना चाहते हैं जानते हैं? पूरी का अंदर जाते हैं, आप लोगों को कभी मंगला देवी दर्शन नहीं किया होगा कभी भी। मंगला देवी, मंगला देवी कहाँ का मंगला देवी? पूरी से 60 किलोमीटर दूरी पर पूरी मंगला आरती जो ही पूरी से 60 किलोमीटर दूरी पर मंगला देवी है, जो कि स्वयं प्रकट मतलब जगन्नाथ का स्वरूप को बताते हैं। नवकलेवर का टाइम पे स्वप्न आदेश देते हैं, वो है वो देवी की दर्शन करना। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है मंगला देवी क्या होता है। हाँ, और दूसरा है कोणार्क जरूर जाना चाहिए। वहाँ पे स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब समुद्र का अंदर प्रवेश किए थे तो प्रवेश करने के बाद मछुआरी ने पकड़ा था। कहाँ पे पकड़ा था? वही चंद्रभागा में, चंद्रभागा और कोणार्क। हाँ, दोनों मतलब 1 किलोमीटर डिस्टेंस है चंद्रभागा और क्या है कोणार्क। चंद्रभागा के बारे में चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, मछुआरी ने चैतन्य महाप्रभु को पकड़ा था वहीं पे। कोणार्क जरूर जाना चाहिए। और मतलब कोणार्क जो सन टेम्पल है वर्ल्ड में एक ही मंदिर है, वर्ल्ड में एक ही सन टेम्पल है, वो जाना चाहिए। तब और एक दिन अलारनाथ जाना चाहिए। ये अलारनाथ हो गया और एक ही हो गया साखी गोपाल, ये जाना चाहिए। ये सब साइड सीन। और एक दिन आप खीरचोरा गोपीनाथ चले गए। और एक दिन जाना चाहिए नीलमाधव, कौंटिलो नीलमाधव, जहाँ पे स्वयं पहले जगन्नाथ थे। जगन्नाथ जहाँ पे थे चतुर्भुज का रूप में वहीं थे। हाँ, लेकिन इंद्रदुम्न राजा को चतुर्भुज का रूप में दर्शन नहीं दिए, लेकिन हाँ विद्यापति को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। विद्यापति को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, लेकिन इंद्रदुम्न को राजा को दर्शन नहीं दिए। चतुर्भुज रूप में दर्शन नहीं देके चतुर्धा मूर्ति का रूप में दर्शन दिए। सही ना? इस प्रकार तब नीलमाधव जाना चाहिए। ये है पूरी का बाहर सब दर्शन करने के लिए। और कुछ लोग थोड़ा पिकनिक बनाने के लिए जाना चाहते हैं तब चिल्लिका भी चला जाना चाहिए। चिल्लिका, चिल्लिका लेक एक ह्रद है, चिल्लिका बोलते हैं वहाँ। वो सब आता है मतलब आप लोग को देखेंगे वर्ल्ड का प्रसिद्ध जगह कहाँ से है, कहाँ पे है, तब वो सारा चीज़ आ जाता है। तब उड़ीसा में ये जाने के बाद है फिर पूरी का अंदर सब दर्शन करना चाहिए। पूरी का अंदर पूरी का अंदर फिर क्या क्या दर्शन करना चाहिए? पूरी का अंदर पहले जाना चाहिए गंभीरा। चैतन्य महाप्रभु जहाँ कितना साल थे? कितना साल? 18 साल, एक दिन दो दिन नहीं। हमें 18 दिन माला जपते तो हमारा हो जाता है, बोला हमें 18 दिन माला किया भगवान दर्शन नहीं दे रहा है। और 18 साल और गंभीरा का अंदर, छोटा से घर है, इतना बड़ा घर नहीं, छोटा से घर का अंदर दर्शन भगवान का भजन, तब गंभीरा दर्शन करना चाहिए। गंभीरा का पास है सीध बकुल। गंभीरा का पास क्या है? सीध बकुल, सीध बकुल दर्शन। जो बकल का पेड़, बकल का पेड़ का बारे में बता दे रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु स्वयं वो पेड़ लगाए हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं वो पेड़ को लगाए हैं, जानते हैं ना सब ये लोग, सब बताया था एक बार। चैतन्य महाप्रभु ये पेड़ लगाए, एक बार चैतन्य महाप्रभु क्या किए, एक बार क्या हुआ था, थोड़ा से लेट हो रहे हैं आप लोग, कोई परेशान नहीं? थोड़ा जय जगन्नाथ बोल के बोलिए, क्योंकि थोड़ा से मेरा कष्ट हो रहा है, क्यों लेट हो रहा है, प्रसाद नहीं आ रहा है, बारंबार भी फोन भी आ रहा है वहां से, पता नहीं चल रहा है मैं फोन कहाँ से ये करूँ, जो भी है। तब चैतन्य महाप्रभु एक बार जगन्नाथ मंदिर पे गए, हर दिन जगन्नाथ मंदिर जाते थे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पे सुबह मंगलारती का बाद, सुबह मंगलारती होता है, मंगलारती का बाद भगवान को ये दरवाजा खोला तो है, तब मंगलारती का बाद है जगन्नाथ को दांतुन किया जाता है, क्या किया जाता है, दांतुन किया जाता है, और वो दांतुन हर दिन तीन दांतुन होता है, कितना, तीन दांतुन आता था, तब हर दिन तीन दांतुन, लेकिन जगन्नाथ का जो दांतुन होता है वो दांतुन का नाम है कुंभाटुआ, उड़िया भाषा में कुंभाटुआ की लकड़ी होता है, कुंभाटुआ की पेड़ होता है। तब कुंभाटुआ का जो पेड़ है वो पेड़ से तीन दांतुन लेके जगन्नाथ का सेवा करते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सोचे वो दांतुन होने का बाद मेरा को एक बार मिल जाना चाहिए, एक दांतुन मेरा को चाहिए, मतलब चैतन्य महाप्रभु अपना मन में ये भावना लिया मेरा को मिलना चाहिए, और वो दांतुन होने के बाद पंडितों को क्या करते थे, दे देते थे, महाप्रसाद का रूप में दे देते थे। देने का बाद जब एक दिन चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे, क्यों सोचे, क्योंकि जो हरिदास ठाकुर एक ही धूप में बैठ के भजन कर रहा था, धूप में बैठ के भजन कर रहे थे, भगवान भक्त के लिए कितना व्याकुल है देखे, ठीक है, मेरा भक्त इतने गर्मी में बैठ के भजन कर रहा है और 3 लाख नाम ले रहा है। तब चैतन्य महाप्रभु मंदिर के अंदर गए, एक दिन ये लीला हो रहा है, एक प्रकार की लीला हो रहा है, तब एक दिन क्या हुआ, पुजारी आके मंगलारती कर दिया, करने का बाद दांतुन भगवान का सेवा में लगाने के लिए जा रहा है, तब दो दांतुन है, एक ही दांतुन मिस हो चुका है नहीं, गुम हो चुका है नहीं, और दो दांतुन था वो कुंभाटुआ का दांतुन था, एक ही दांतुन नहीं है, तो और तो पुजारी ने बड़ा आश्चर्य हो गया, क्या करूं अभी, भगवान का तो सेवा करना है, सेवा में नहीं तो अपराध हो जाएगा। तब उन्होंने इमीडिएटली मंदिर का थोड़ी से बाहर गया, बाहर जाके देखा एक ही पेड़ है, वो पेड़ था बकल का पेड़ है, वो पेड़ से एक ही दांतुन को तोड़ के ला के भगवान का सेवा में लगा दिया, दांतुन हो गया, भगवान का सेवा तो कम से कम हो गया, दांतुन का सेवा कम से कम तो हो गया। होने का नाते चैतन्य महाप्रभु वहीं पे खड़ा है, गरुड़ का पीछे खड़ा होकर दर्शन कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है। तब दांतुन होने का नाते पूजा पंडा ने क्या किया, उसी दिन वो जो बकल का दांतुन था वो चैतन्य महाप्रभु के हाथ में दे दिया, चैतन्य महाप्रभु के हाथ में दे दिया। तब चैतन्य महाप्रभु इसको लेके पहले तो सिर में लगाए, पहले लेकर किस में लगाए, पहले सिर में लगे, महाप्रसाद है ना, हमें कभी भी महाप्रसाद लेते हैं इसी बात, फूल लेते हैं कि तुलसी लेते हैं कि चरणामृत लेते हैं, पहले माथा पे लगाना चाहिए कुछ भी, तब महाप्रसाद लेते हुए इमीडिएटली माथा पे लगाए, माथा पे लगा के तब मंदिर दर्शन करके बाहर निकले, बाहर निकल के गए जाके हरिदास को, फिर क्योंकि आने का टाइम पे और जाने का टाइम पे हरिदास के पास, हरिदास को दर्शन करना, हरिदास के बारे में पूछना कैसा चल रहा है आपका भजन साधन, भगवान का कितना व्याकुल है भक्त को, भक्त के लिए कितना व्याकुल है। तब देखे तब वो जो दांतुन लिए थे वो वहाँ पे बोए दिए, वहाँ पे लगा दिए, लगाने के बाद वो जो बकल का दांतुन था इमीडिएटली क्या हो गया, पेड़ बन गया, समय नहीं लगा, कुछ समय नहीं लगा, ये भगवान का लीला है कि नहीं है, भगवान का लीला है, हम लोग आश्चर्य हो जाएंगे, हमें हर चीज में आश्चर्य होते हैं, हर चीज में हमें आश्चर्य हो जाएंगे, लेकिन भगवान इमीडिएटली वो पेड़ बकल का पेड़ बन गया, और पेड़ ने बनने का नाते बहुत अच्छा पेड़ बन गया, और उसका नीचे बैठ के हरिदास ठाकुर ने क्या किया, भजन किया, भजन करते 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 अंत हो गए, जब जब शरीर से प्राण निकला तब चैतन्य महाप्रभु स्वयं आके क्या किए, और उनका शरीर को लेके स्वयं हस्तकमल से उनका शरीर को उठा करके कहाँ लेकर गए, गंभीरा से नहीं, सीध बकल से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर समुद्र है, वहाँ से 2 किलोमीटर समुद्र है और वहाँ पे लेके समुद्र का किनार पे उनको समाधि दिए, जहाँ पे अभी इस्कन है, इस्कन का अपोजिट में, इस्कन का अपोजिट साइड में समाधि है, हरिदास ठाकुर का समाधि वहाँ पे, चैतन्य महापुरुष स्वयं हरिदास का समाधि दे, हरिदास का समाधि दे के फिर स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए जगन्नाथ मंदिर के अंदर, आके क्या किए, भिक्षा किए, स्वयं चैतन्य महाप्रभु आकर भिक्षा किए और आनंद बाजार से। अभी हम लोग कभी गुरु के लिए कुछ भिक्षा करते थे हमको शर्म लगता है, कभी कभी दीक्षा होता है, दीक्षा के बाद हमको भिक्षा मांगना पड़ता है, पड़ता नहीं पड़ता है, दीक्षा के बाद जरूर भिक्षा करना चाहिए और भिक्षा में जो कुछ मिला है गुरु का चरण में समर्पित कर देना चाहिए। उस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भक्त के लिए व्याकुलता होकर उनको समाधि देने का बाद है क्या किए, तब आनंद बाजार पे जाकर भिक्षा किए, भिक्षा करके जो लोग वो हरिदास ठाकुर का समाधि में भाग लिए थे सबको प्रसाद खिलाए, और प्रसाद ऐसा नहीं खिलाया, एक ही चम्मच ऐसा नहीं दिया, भगवान का हाथ बहुत बड़ा होता है और वो इतने भर भर के खिला है, हाँ सबका पेट भर गया, सब लोग आनंद में भोजन किए महाप्रसाद को ये, और वहाँ जाके सीध बकुल जहाँ पे हरिदास ठाकुर जी भजन करा था वहाँ जाके दर्शन करना चाहिए पुरी में। दूसरा है, आप लोग को जरूर जाना चाहिए जहाँ पे चैतन्य जगन्नाथ का स्वरूप, जहाँ पे जगन्नाथ का जो लकड़ी पहले आया समुद्र में भासमान अवस्था में आया, भासमान अवस्था में आके समुद्र का किनार पे लगा था, उसी जगह का नाम क्या है, चक्र तीर्थ, कहाँ पे है, चक्र तीर्थ, वो रोड का नाम है चक्र तीर्थ रोड, अभी आपको बताएंगे चक्र तीर्थ जाना है आपको रिक्शा वाला ऑटो वाला लेकर छोड़ देगा चक्र तीर्थ, और वहाँ पे एक चक्र पड़ा है, परिक्रमा भी होता है, अभी जो परिक्रमा होने वाला है कार्तिक का बाद अभी परिक्रमा है, इसको कहते हैं पंचतीर्थ परिक्रमा, पंचतीर्थ परिक्रमा अभी होने वाला है, ये पंचतीर्थ परिक्रमा अभी मतलब 19 तारीख को परिक्रमा है, डेट फिक्स है, और परिक्रमा कितना किलोमीटर जानते हैं, 21 किलोमीटर, गोवर्धन का परिक्रमा जितना किलोमीटर है इतना किलोमीटर परिक्रमा है, और सुबह मंगलारती के बाद निकलते हैं 10-11 बजे परिक्रमा खत्म हो जाता है, कम से कम पहले जब परिक्रमा चालू हुआ था 700 भक्त लोग थे, पहले जब परिक्रमा स्टार्ट किए थे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज परिक्रमा स्टार्ट किए थे तब 700 भक्त लोग थे, और 700 भक्त लोग खिलाना पिलाना उनको रहने के लिए व्यवस्था करने के लिए भी पहली बार परेशानी हो गए थे, हम लोग पहली बार थे तब उसी टाइम में भोजन करने के लिए कुछ नहीं मिला तो मूढ़ी खिलाए थे, मूढ़ी समझते कि नहीं समझते, मुरमुर वो भी खाना पड़ा, वो 700 भक्त उसी टाइम पे थे तो, लेकिन अभी का टाइम पे 700 जगह पे 7000 भक्त लोग परिक्रमा कर रहा है, इसी डेट इसी प्रकार बढ़ते जा रहा है। और ये तब तो वहाँ पे आप चक्र तीर्थ में आप जाना जरूर चाहिए, और चक्र तीर्थ में और क्या दर्शन करना चाहिए, चक्र तीर्थ का पास है एक ही है बेढ़ी हनुमान, बेढ़ी हनुमान, हनुमान जी को बांध के रखा गया है वहाँ पे जरूर दर्शन करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है हनुमान जी को कैसा बांध के रखा है लोहे का जंजीर में, वहाँ पे जाना चाहिए। और इसका बाद है आप पुरी का अंदर तोटा गोपीनाथ दर्शन करना चाहिए, माता जी को पूरा मालूम है तोटा गोपीनाथ, जहाँ पे सारा विश्व में आप भगवान को दर्शन करेंगे तो भगवान हर जगह पे खड़े है, भगवान कैसे है खड़े है, दर्शन देंगे आपको सब जगह पे खड़े है, लेकिन गोपीनाथ तोटा मतलब जंगल, तोटा मतलब उड़िया भाषा में तोटा बोलते हैं, तोटा कोई कोई तोटा को जगह पे छोटा बोलते हैं ऐसा नहीं अपभ्रंशित शब्द नहीं बोलना चाहिए, तोटा गोपीनाथ तो वहां पे गोपीनाथ जी बैठे हैं पद्मासन पर, और भगवान का चरण को दर्शन करना चाहते हो तोटा गोपीनाथ पे तब आप सुबह 5 बजे जरूर जाना चाहिए, सुबह कितना बजे 5 बजे राइट टाइम पे वहाँ पे मंगलारती होता है और चरण दर्शन होता है, और वहाँ पे भगवान को हम जिस प्रकार श्रृंगार करते हैं इस प्रकार ड्रेस नहीं पहनाते हैं, और वहाँ पे श्रृंगार कम से कम 4 घंटा लगता है, जिस प्रकार राधा श्याम सुंदर आप वृंदावन में जो राधा श्याम सुंदर को श्रृंगार किया जाता है उसी प्रकार वहाँ पे गोपीनाथ को श्रृंगार करते हैं, बहुत अच्छा श्रृंगार होता है इसीलिए टाइम बहुत लगता है, और वहाँ पे गोपीनाथ को साड़ी पहनाते हैं, ये समझ लीजिए, वहाँ पे गोपीनाथ गो अच्छा साड़ी, बहुत सारे माता लोग कोई ना कोई जाते हैं तब वहाँ पे साड़ी के लिए पैसा देकर आते हैं, नहीं तो खुद नया साड़ी, दिल्ली का साड़ी, बनारस का साड़ी, आप लोग जाते हो तो कम से कम ये गिफ्ट लेकर जाना चाहिए भगवान के लिए, भगवान को दे, भगवान इसको ग्रहण करेंगे, आपका श्रद्धा प्रेम ये होना चाहिए, वहाँ पे देकर आएंगे। और आप बाई चांस आप देखना चाहते हो आप जो दिया हुआ चीज़ भगवान पहने, तब आप बोलेंगे मैं कल आऊँगा, आप भगवान को श्रृंगार करना उसी साड़ी से, जो भी आप ड्रेस दिया और भगवान इसी प्रकार का श्रृंगार वो कराएंगे और आपके भी दर्शनों का, तब तोटा गोपीनाथ का दर्शन करना है। इसका बाद आप लोग को बीच रास्ता में आ जाइए, मिडिल रास्ता जो कि बड़दांड, बड़दांड पे आता है, तो क्या दर्शन करना चाहिए, भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर दर्शन करना चाहिए, भक्ति विनोद ठाकुर जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका क्या है, पुत्र है ही नहीं, बेटा है, भक्ति विनोद ठाकुर का, भक्ति विनोद का बेटा का नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका पुत्र है भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति विनोद ठाकुर का क्या है, पुत्र है, तब उनका घर दर्शन करना चाहिए वहाँ पे गोपीनाथ, नहीं मतलब वहाँ पे बहुत सारा विग्रह, जगन्नाथ का विग्रह भी रखा गया, गोड़िया मठ है वो पुलिस स्टेशन का पास है। इसका बाद आप उसी रास्ते में आप आगे आते हैं तब गुंडीचा मंदिर दर्शन करना है, जहाँ पे सात दिन के लिए जगन्नाथ आते हैं अपना जन्मस्थान, कहाँ आते हैं अपना जन्मस्थान, और वो जन्मस्थान क्या कहते हैं सुंदरांचल, क्या कहते हैं सुंदरांचल, और जगन्नाथ जहाँ पे अभी विराजमान इसको क्या कहते हैं नीलांचल, ये नीलांचल है वो सुंदरांचल है, ये द्वारिका है और गुंडीचा मंदिर को वृंदावन कहते हैं, ठीक है, तब वहाँ आके आप दर्शन करते हैं। अभी तो आप जाते हो तो विग्रह वहाँ पे विग्रह नहीं होते हैं, हाँ उनका जिस जगह पे सिंहासन में बैठते हैं वो सिंहासन पर ही दर्शन होता है, तब ये सब पूरी के अंदर तो बहुत सारा चीज़ आपको दर्शन करने के लिए मिलेगा, लेकिन सब कुछ दर्शन करते हुए फिर आप वृंदावन वापस आए, लेकिन मेन है पूरी में जाते हो तो कुछ भी अपराध नहीं करना है, और पूरी में जाते हो तो जरूर समुद्र में स्नान करना चाहिए। आप कहाँ पे स्नान किया कि नहीं किया, कोई समुद्र में, कोई तालाब में, घर पे कोई स्नान किया कि नहीं किया, लेकिन पूरी में जाते हो तो पूरी समुद्र में स्नान करना जरूरी है। क्यों कहते हैं अन्य तीर्थे कृतम पापम समुद्र स्नानम विनश्यति, समुद्र तीरे कृतम पापम समुद्र स्नानम विनश्यति, समुद्र स्नान करने मात्र से जितने सब तीर्थ है, जितने तीर्थ में आप जितने सब पाप किए हैं समुद्र स्नान करने मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है, इसको कहते हैं। इसलिए पूरी में स्नान करने का विधि इसलिए है, ये महोदधि है, महोदधि सारा तीर्थ का जल, तब और आप जाके पूरी में कुछ पाप किया, जब पूरी में कुछ पाप किया समुद्र ते कृतम पापम समुद्र स्नानम विनश्यति, समुद्र किनार पे आप कुछ पाप किया तब समुद्र में स्नान करने मात्र से वो पाप नष्ट हो जाता है, ये जानना चाहिए। इसलिए हम कम से कम जगन्नाथपुरी जाते हैं तब जगन्नाथपुरी में इस प्रकार विधि से स्नान करना चाहिए। हरे कृष्णा। थोड़ा 5-10 मिनट कीर्तन करते हैं, प्रसाद आने तक आज क्यों लेट हुआ पता नहीं, थोड़ा कीर्तन करते हैं।